ओम शांति। कल हम सभी ने प्यारे बाबा की मुरली सन्मुख सुनी और आज सवेरे हमारे हाथ में भी आ गई, सभी ने पढ़ी भी होगी, लेकिन केवल सुनना और पढ़ना इससे अधिक फायदा तब होगा जब उसका मंथन करके मक्खन बनाकर खाया जाए। वो भी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी। हमारे सामने आज एक ऐसी विशेष हस्ती है जो हमारे साथ कल की मुरली रिवाइज करेंगे, मंथन करके हमें मक्खन हाथ में देंगे। मुंबई से पधारे हुए आदरणीय रमेश भाई जी, हम सभी आपका सभा में बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं। भाई जी स्वागत है, स्वागत है। आप यज्ञ के प्रमुख वरिष्ठ भाइयों में से एक है। मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम एलएलबी करने के पश्चात आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम फर्स्ट क्लास फर्स्ट रह के पास की है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी, इसका भी आपने अध्ययन किया। उसके अलावा आर्ट, लिटरेचर, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स आदि की 4000 से अधिक बुक्स का आपने अध्ययन किया है। आपने अकाउंटेंसी के लेक्चररशिप बॉम्बे यूनिवर्सिटी में की और साथ ही साथ आप फिलोसॉफी जैसे विषय के भी लेक्चरर रहे हैं। 1952 में आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए और 1961 से आप ब्रह्मा कुमारीज से संपूर्ण रूप से जुड़ गए। यज्ञ की सेवाओं की अनेक नई गतिविधियां आपने शुरू की है। विदेश सेवा के पहले डेलीगेशन में भी आप गए थे, जिस डेलीगेशन के द्वारा लंदन, हांगकांग आदि में सेंटर्स खोले गए। इसके पश्चात यूएसए, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि स्थानों पर भी आपने सेंटर्स ओपन करने में अपना योगदान दिया है। आपने एवं आदरणीय उषा बहन जी ने गुजरात में भी अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना की है। वर्तमान समय आप विश्वविद्यालय में अनेक पोजीशंस की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के रूप में आप आर्थिक एवं कानूनी कारोबार संभालते हैं। वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन सोसाइटी के आप फाउंडर सेक्रेटरी हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। जूरिस्ट विंग एवं स्पार्क के आप चेयरपर्सन हैं। श्री शिव आध्यात्मिक फाउंडेशन के आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। इसके अलावा आप एक बहुत कुशल वक्ता एवं लेखक भी हैं। आपने अनेक किताबें, लेख एवं डांस ड्रामा आदि लिखे हैं। विशेषकर यहाँ जिक्र करने की दिल होती है जो आपने लिखी हुई किताब पवित्र धन हमारे में से लगभग सभी ने पढ़ी होगी। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेलेंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपको एक विशेष अवार्ड संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी प्राप्त हुआ है। तो ऐसे एक बहुत विशेष अमूल्य आदि रतन की द्वारा हम कल की मुरली रिवाइज करेंगे, आदरणीय रमेश भाई जी।
ओम शांति। आप सबको, जैसे बाबा ने कल वैलेंटाइन डे के बारे में सबको अभिनंदन दिया, मैं भी आप सबको कल के दिन की, प्यार का दिन की, स्नेह का दिन की, शक्ति का दिन का अभिनंदन देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। कल बाबा ने, मैं सोच रहा था कि आज बाबा किस बात के ऊपर मुरली चलाएंगे, क्योंकि अभी आगे के जो तीन मुरलियां जो है अभी आगे आएंगी, शिवरात्रि की आएंगी, तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में होगी, उसके बाद होली के उपलक्ष्य में मुरली होगी, और उसके बाद 30 मार्च की जो है वो इस सीजन की समाप्ति की और अगले सीजन तक क्या होमवर्क करने का उसके बारे में होगी। तो कल का ही मुरली ऐसा था, मतलब ये जो फ्री था, मतलब उसके लिए कोई उत्सव या त्यौहार के साथ कनेक्शन नहीं था। जो बाबा ने फिर क्या कर दिया, कल वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में कर दिया, और कल का दिन की एक खूबी एक थी, 14 फिर फरवरी, फिर 14, 14, 2, 14 आपने सबने नोट किया, 14, 2, 14 मतलब 14, 14, 2 बार आया। इस प्रकार से बहुत कम बार आते हैं, साल में दो एक ही बार आता है 14, 2, 14 क्योंकि हर साल आएगा 14 अप्रैल 14 मार्च, परंतु 14 जो 2014 एक ही बार आएगा। इस प्रकार से ऐसा होगा अगले साल क्या होगा 15 आएगा, परंतु 14, 2, 14 तो एक ही बार आ सकता है। तो इस प्रकार की खूबी कल के दिन जिनकी देखी, कईयों के जीवन के अंदर कल के दिन का, कल के दिन का आपको मालूम नहीं होगा, आज के अखबार में हमने पढ़ा कि करीब हिंदुस्तान में 22 करोड़ रुपया की सौगातें, फ्लावर्स आदि जो भी है, 22 करोड़ रुपया के फ्लावर्स सौगातें आदि जो भी है एक दूसरे को कल एक दिन के अंदर लोगों ने एक दूसरे को दिया। विदेशों में तो इनसे भी ज्यादा $23 अरब का एक दिन में लोगों ने खर्च किया सौगात देने के लिए, फ्लावर्स देने के लिए। सौगात क्या क्या दिया, किसी ने टेलीफोन दिया, किसी ने क्या दिया, हजार अनेक प्रकार की चीजों के लिए। उसके ऊपर कल के दिन मतलब दुनिया के अंदर ये वैलेंटाइन डे की कितनी इम्पोर्टेंस है कि $23 अरब का कल के दिन लोगों ने आदान प्रदान गिफ्ट के रूप में, कईयों ने भाइयों ने बहनों को दिया, बहनों ने भाइयों को दिया। उसके अंदर उसमें भी ये भी आया हुआ है कि 65% भाइयों ने बहनों को दिया और 35% जो है वो बहनों ने भाइयों को दिया। इस प्रकार से कल का दिन जो है कईयों ने रिबिन बांधी, कईयों ने फूल बांधा, एक एक फूल भी गुलाब का फूल जो है उसके अंदर भी अलग अलग रंग का अपना अपना प्रभाव है। मेरे को तो बाद में मालूम पड़ा खाली फ्रेंडशिप होती है तो पीला रंग का होता है, ज्यादा फ्रेंडशिप गहन फ्रेंडशिप होती है तो लाल रंग का फूल होता है। किसी का रिबिन बांधते हैं, किसी को फ्लावर देते हैं, हर चीज का अपना अपना महत्व कर करके लोगों ने वैलेंटाइन डे के अंदर उसकी गहराई में जाकर के किया हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि आस्ते आस्ते वर्तमान 21वीं सदी या 20वीं सदी के जो नए नए त्यौहार जो है उसकी इम्पोर्टेंस इंटरनेशनली ज्यादा होती है, हमारी रक्षाबंधन, हमारी दिवाली आदि की इम्पोर्टेंस जो है कम होती जाती है। फिर भी दादी जानकी ने विदेशों के अंदर रक्षाबंधन का इतना सुंदर महिमा बढ़ाया हुआ है कि दादी जानकी पहले अभी तो हिन्दुस्तान में रहती है, पहले वहां रहती थी लंदन में, तो एक एक हफ्ता तक रक्षाबंधन का प्रोग्राम होता था, जर्मनी से, अमेरिका से, यूरोप से, रशिया से, सब दादी से रक्षाबंधन बनवाने के लिए जाते थे और लोग प्यार से रखते थे, बांध करके जो राखी बांधी होंगी ना एक एक साल तक रखते थे, एक साल के बाद दूसरे साल तक ही हाथ में रक्षाबंधन बांधी हुई होंगी तो सबको मालूम पड़ेगा कि अभी रक्षाबंधन है, हमने बाबा दादी से रक्षाबंधन बंधवाई है, हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की हुई है। तो कल के मुरली के अंदर बाबा ने क्या क्या बताया उसके ऊपर हम रिवाइज करते हैं। मैंने थोड़ा टाइमिंग नोट किया और मैं हर समय बताता हूँ, 7:35 को दादी गुलजार यहाँ पर स्टेज पर आई, बैठना शुरू किया और भोग में जाने का अर्थात संदेश मिले वतन में जाने का गीत जो है 7:43 पर वो गीत बजा। दादी जी बाबा के पास सुषमा वतन में 7:47 चार मिनट के अंदर दादी जी जो है बाबा के पास गई और बाबा की पधरामणी जो है 7:57 को बाबा की पधरामणी हुई और 8:07 बराबर 10 मिनट बाबा ने कल दृष्टि दिया दो बार। और हमारे रवि भाई जो है खड़ा भी हुआ, खड़ा होकर के बैठ गया, फिर आया माइक रखा तो भी बाबा ने दृष्टि देना चालू किया। तो 7:57 से बाबा हम बच्चों के बीच में पधारे और 9:56 बाबा ने हम बच्चों से विदाई लिया, मतलब 2 घंटे में 1 मिनट कम, इतना समय बाबा हम बच्चों के साथ रहे, 2 घंटे में भी 1 मिनट कम, मतलब एक समझो 2 घंटा रहा हमारे साथ बाबा। और 2 घंटे के अंदर देखो बाबा ने कितना हम सब बच्चों के अंदर उमंग उत्साह प्रेम आदि का खजाना भर दिया। बाबा ने पहले मुरली के अंदर प्यार की दिन की बात की है, वो सारी बातें जो चली वो 8:07 से 8:32 35 मिनट बाबा ने प्यार की स्नेह की आज का दिन की बात कही। फिर 8:32 से बाबा ने कहा कि बाबा एक संकल्प देते हैं, तो एक संकल्प की जो बात जो है हम जो निर्विघ्न बनो बनाना ये सारी बातें जो है आज सुबह गीत भी हम सब ने सुना, तो वो 8:32 बाबा ने उसके ऊपर शुरू किया और 9:15 तक मुरली इसके ऊपर ही चली, निर्विघ्न बनो बनाओ अपने वायुमंडल को सेंटर को अपने साथियों को उस प्रकार से निर्विघ्न बनाने की बात कही। अर्थात इफेक्टिव मुरली कल का जो मेन टॉपिक जो था निर्विघ्न बनो बनाओ उसके ऊपर 43 मिनट बाबा ने मुरली चलाई। उसके बाद जोन से मिले 9:15 शुरू किया और 9:22 माने 7 मिनट अलग अलग जोन जो है तमिलनाडु नेपाल बंगाल आदि आसाम बिहार उड़ीसा आदि से बाबा 7 मिनट मिले। उसके बाद डबल विदेशियों को 9:22 से 9:30 तक डबल विदेशियों से मिले। इसके बाद 1 मिनट जो है मतलब बाबा ने याद प्यार दिया 9:31 को बाबा ने याद प्यार का समाप्त किया और स्टेज का कार्यक्रम शुरू हुआ और 9:56 अर्थात स्टेज का कार्यक्रम 25 मिनट चला। इस प्रकार से कारोबार जो है टाइम का भी समझना चाहिए, क्योंकि बाबा हम बच्चों को अनेक प्रकार की बातें सिखाते हैं, इसमें एक बात सिखाते हैं जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए वो भी सीखना है तो बाबा के पास से सीखिए। कल वैलेंटाइन डे था, आज का दिन इस प्रकार से बाबा ने 6 बार आज का दिन की बात कही, हाथ उठाने की कसरत कराई। आप सबने गिनती किया कितनी बार बाबा ने हाथ उठा हाथ उठवाया? 18 बार हाथ उठवाया, 18 बार गिनती करना चाहिए। हमने बाबा को देखा, एक भाई ने कहा कि मैंने 4 बार हाथ उठाया उसके बाद मैं थक गया। मैंने कहा 4 बार हाथ उठाया मैं थक जाएंगे, तो बाबा ने 18 बार हाथ उठवाया। तो क्या करें, आप सबने 18 बार हाथ उठवाया था कि 2-4 के बाद थक गए? जिन्होंने 18 बार पूरा ही हर समय पर हाथ उठाया होगा वो हाथ उठा रहे। तो देखो कल का 18 दिन 18 बार और आज का 1 बार मतलब 19 बार हो गया हाथ उठाना, मतलब वो भी एक है कला है। कि फिर पिछली सीजन और इस सीजन के अंदर बाबा ने अपने विचार प्रकट करने का भी तरीका चेंज किया हुआ था। पिछले सीजन जो होते हैं तब तक इसके पहले की सीजन के अंदर बाबा क्या बोलते थे, शुरू करते थे चारों ओर के बच्चों के इस प्रकार से चारों ओर के बच्चों के द्वारा मुरली शुरू करते थे। हम लिखते थे तो पहले चारों ओर लिख देते थे और हमेशा ही वो चारों ओर शब्द बराबर होता था। अभी इस सीजन में बाबा ने चारों ओर के शुरू में नहीं बोलते हैं, कल 2 शब्द के बाद बोला। कल बाबा ने कहा आज प्यार के सागर चारों ओर के बच्चे। तो क्या हो गया, हम पिछले मिस मुरली तक पिछले सीजन तक चारों ओर के बच्चे जो है ना वो उनको प्रधान पद देते थे और बाबा अपने आप को सेकंड नंबर पर रखते थे। इस सीजन में क्या किया, बाबा ने अपने आप को प्रधान पद दिया कि आज प्यार का सागर चारों ओर के बच्चे। आप समझा, जिन्होंने बाबा की मुरली की गहराई में जाकर के देखा होगा उनको मालूम पड़ेगा ये एम्फोसिस जो है पिछली सीजन की मुरली तक बच्चों के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस था। इस समय की मुरली के अंदर क्या कर दिया बाबा ने, अपने ऊपर आज प्यार के सागर चारों ओर के बच्चों को बहुत 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 प्यार दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। ये भी एक कला है, हम सब प्यार लेने में होशियार है और तो प्यार देने की बात जो आती है प्यार देना वो बहुत कठिन बात है। हम गुस्सा कर सकते हैं, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं आंखों से, आज भी आज की मुरली में भी है, रोने की बात आई, ये सारी बातें जो है हम कर सकते हैं, पर प्यार देना, स्नेह देना बहुत कठिन बात है। हमारे पास डबल फॉरेनर्स की यहाँ पर रिट्रीट होती है ना, उसके अंदर मेरा एक टॉपिक था पावर ऑफ लव, हम प्रेम की शक्ति, प्यार की शक्ति, ये बहुत गुही है बात है, प्यार की शक्ति अभी तक हम लोगों ने पहचान ही नहीं है, और बाबा इस प्यार की शक्ति के द्वारा ही हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। माँ बाप वो भी अपने बच्चों को प्यार देते हैं, उसके आधार पर ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। प्यार की शक्ति बहुत बड़ी बात है। विवेकानंद ने प्यार की शक्ति के बारे में अपने जो 9 वॉल्यूम्स लिखे हुए हैं उसमें एक में लिखा हुआ है प्यार की शक्ति क्या होती है। विवेकानंद जो है ना श्रीनगर गए हुए थे, आप सब जानते तो होंगे, विवेकानंद का नाम तो सुना हुआ होगा। तो विवेकानंद जो है जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर जो है वहाँ श्रीनगर गए हुए थे, वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी है, उसको कहते थे शंकराचार्य की पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी है परंतु स्टीप है, मतलब चढ़ना जो है बहुत कठिन होता था। तो शंकराचार्य चढ़ रहे थे तो वो भी आधे में थक गए, शंकराचार्य थक गए तो एक वृक्ष जो है इस वृक्ष के छाया में जाकर के खड़े रहे तो ताकि थोड़ा रेस्ट मिले, फिर आगे का चढ़ाई ऊपर चढ़ने का जो कारोबार करेंगे। इतने में एक वहां की श्रीनगर की मतलब वहां की जम्मू कश्मीर की एक कन्या जो है करीब 8-9 साल की होगी, वो अपनी गोद में अपना भाई जो है 5-6 साल का बच्चे को उठा करके गीत गाती 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 ऊपर चढ़ रही थी, समझा। एक वहां की कश्मीर की कन्या 8-9 साल की होगी, वो अपने गोद में 5-6 साल का अपना भाई को उठा करके गीत गाती गाती ऊपर चढ़ रही थी। तो विवेकानंद को लगा कि ये क्या है। अब देखिए प्यार की शक्ति के कारण वो बहन जो है उसको अपने भाई को उठाने की बोझ नहीं लगता था, परंतु विवेकानंद के अंदर भाई के बारे में प्यार नहीं था, इसलिए वो भाई भाई नहीं लगा परंतु भाई बोझ लगा, इसलिए वो वृक्ष की छाया से बाहर निकल करके बहन के पास आया। बहन को आकर के कहना लगा कन्या को, कश्मीर की कन्या को, कि ये बोझ क्यों उठाया है, ये बोझ क्यों उठाया है। तो बहन चारों ओर देखने लगी कहाँ है बोझ, कहाँ है बोझ, कहाँ है, ये विवेकानंद ने खुद लिखा हुआ है। तो फिर उसने पूछा, फिर उसने विवेकानंद को पूछा बोझ कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो विवेकानंद ने उसके भाई के सिर पर हाथ रखा कि ये तो बोझ है, इसको क्यों उठा करके चलती है, वो 5-6 साल का है, वो अपने पांव पर चढ़ सकता है, तुम क्यों उसको उठा करके चलती है। तो बहन ने कहा कि विवेकानंद को कहा कि ये बोझ कहाँ है, ये तो मेरा भाई है, और ऐसा मेरा भाई है कह करते 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 वो ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। तो विवेकानंद ने कहा प्यार की शक्ति क्या है, प्यार की शक्ति के कारण बोझ बोझ नहीं लगता है, और प्यार की शक्ति नहीं होती है तो क्या होता है, जिंदगी के अंदर भी ऐसा ही होता है, जिंदगी के अंदर हम प्यार नहीं देंगे तो बोझ होता है, बोझ और प्यार देंगे तो बोझ जो है कांटों से फूल बन जाता है, इस प्रकार से ऐसा दुनिया के अंदर होता है। तो ये सीखने की बात है। एक फिलोसोफर ने अपने किताब में लिखा हुआ है कि वो एक जगह पर गया तो एक बहन जो है ना उसका छोटा बच्चा था 8-10 महीने का, तो वो जो है पांव से ऐसा ऐसा करके अपनी माँ को लात लगा रहा था। तो फिलोसोफर ने उस माता को कहा कि आपका बच्चा देखो अभी से ही आपको लात लगा रहा है, आप जानते हैं लात मारना, जैसे गधा भी लात मारता है आपको मालूम होगा, बहुत प्रसिद्ध है गधे की लात, इस प्रकार से वो बच्चा अपने माँ को लात लगा रहा था। तो वो माता ने कहा कहाँ लात लगा रहा है, कहाँ है, तो कहा देखो यही जो आपका बच्चा आपको ऐसे लात मार रहा है। तो माता ने कहा नहीं वो लात नहीं मार रहा है मुझे, वो तो साइकिल चलाता है, वो तो साइकिल चलाता है। तो वो फिलोसोफर ने लिखा हुआ है कि प्यार है तो लात साइकिल बन गई, और प्यार नहीं है तो साइकिल लात बन गई। तो इसको कहते हैं प्यार की शक्ति, प्यार की शक्ति, प्यार देना बहुत कठिन बात है, रिस्पेक्ट रिगार्ड देना, प्यार देना वो बहुत कठिन बात है, तो ये सीखने की बात है। मेरे को याद है हम लोग बाबा के साथ दिल्ली गए थे, बॉम्बे से हम काबू आए और अबू से बाबा के साथ ट्रेन में दिल्ली गए। दिल्ली जाकर के स्नान पानी करके बाबा के मुरली के क्लास में पहुंच गए। तो जाने से पहले हमको मालूम पड़ गया कि एक भाई दिल्ली से बेंगलोर जा रहा है और बेंगलोर में अपनी मातेश्वरी जी थी। तो हमने एक जल्दी जल्दी में कागज लिख दिया, ट्रेन के सफर का समाचार लिखा कि कैसे हम बॉम्बे से अबू आए, अबू में ही प्लेटफॉर्म पर ही वेटिंग रूम में स्नान पानी कर दिया और बाबा के साथ दिल्ली मेल में अबू आए, अबू से दिल्ली आए, ये सारा समाचार लिख दिया। और हमने ऑलराउंडर दादी को कहा कि एक थोड़ी टोली का एक बॉक्स दे दो, तो वो उन्होंने दिया। और फिर हमने बाबा को बताया कि बाबा ये भाई जा रहा है, हमने बाबा को ये मम्मा को ये पत्र लिखा है और ये टोली मम्मा के लिए। तो बाबा ने कहा देखा है बच्चे ने मेरे पर जीत पाई, मेरे पर जीत पाई, देखो बच्चा कितना क्विक काम करने लग गया। तो मैंने बाबा को कहा ये कागज लिखा हुआ है उसमें आपके ऊपर जीत कहाँ से हो गई। तो बाबा ने कहा नहीं, बाप बच्चों को सिखा रहा है, बाप बच्चों को सिखा रहा है कि बच्चों के अंदर एप्रिसिएशन करने की कला चाहिए। एप्रिशिएट करो सामने वाला ने कुछ भी किया, छोटा काम किया, बड़ा काम किया, छोटी मेहनत किया, जो भी किया उसको एप्रिशिएट करना सीखो। एप्रिशिएट करने से क्या होता है, आपके जेब से तो कुछ खर्चा होता नहीं है, परंतु सामने वालों के एप्रिशिएट करने से क्या होता है, उमंग उत्साह बढ़ जाता है। तो इसलिए एप्रिशिएट करने का वो फर्स्ट स्टेप है, प्यार देने के लिए पहली कलर है, पहली जरूरत है एप्रिशिएट करो। तो सामने वाला क्या है, आपकी बात को स्वीकार करेंगे, उसको लगेगा कि हमने जो भी किया वो उनको अच्छा लगा, ये हमारे हाथों में है। दादी जानकी कहती थी, बहुत अच्छी बात कहती है कि हमारे हाथ में छोटी बात को बड़ी करना और बड़ी बात को छोटी करना। और दादी जानकी ने साफ कहा हुआ है छोटी बात को बड़ी करना में हम सब एक्सपर्ट है। छोटी सी बात होगी, मामूली बात होगी, परंतु उसके आधार पर क्या होता है, बड़ी बात बन जाती है। देखो द्रौपदी ने एक ही बार कहा अंधों की औलाद अंधे है, छोटी बात है, एक ही महावाक्य, एक ही शब्द, एक ही वाक्य बोला और उसके कारण क्या हो गया, महाभारत का युद्ध हो गया। कई कई ने छोटी बात कही कि मेरा बेटा जो है उसको गद्दी मिले और राम जो है उसको वनवास मिले, छोटी बात थी, दो खाली वरदान का था, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, कितनी बड़ी हो गई कि रामायण हो गया। तो महाभारत, रामायण, ये सब छोटी बातों का बीज के आधार पर ही बड़ी बात बन जाती है। तो उसमें हम सब एक्सपर्ट हैं, तो बड़ी बात को छोटी बात, अरे ये तो होता है, ये चलता है, ऐसा करके चला करके चलाना सीखो। हम बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है बच्चे चलाना सीखो, पर तो बच्चे चलाना नहीं सीखते हैं। बच्चे किस बात में एक्सपर्ट है, बाबा नहीं कहा हुआ है, बच्चे चिल्लाने में एक्सपर्ट है, चिल्लाना, क्रोध करना, ये सब बातों में हम एक्सपर्ट है, हम एक सेकंड में कर देते हैं। मैंने एक बार बाबा को कहा था, बाबा आप कई बातों में सागर है, कई बातें आप नहीं कर सकते, उस बात में हम एक्सपर्ट है। तो बाबा ने कहा बताओ कौन सी बात, हमने कहा बाबा हम क्रोध के सागर बन सकते हैं, बन सकते हैं ना, क्रोध करना सिखाना पड़ा किसी को, सब एक्सपर्ट बन गए हैं। मैंने बाबा को कहा बाबा हम तो क्रोध के एक्सपर्ट है, आप क्रोध कर सकते हो, ब्रह्मा शिव बाबा क्रोध कर सकता है। आज की मुरली में जो रोने की बात आई, बाबा हम रो तो दिन में 10 बार रो सकते हैं, बाबा एक भी बार रो नहीं सकते, तो कई बातों में हम एक्सपर्ट है, कई बातों में हम भूलों के सागर है। दादा आनंद किशोर ने बाबा को लिखा था कि बाबा आज निर्मल संता दादी ने आइसक्रीम खिलाया परंतु हमने आपको याद नहीं किया, तो बाबा हमारी ये भूल जो है उसको आप माफ कर देना। तो बाबा ने आनंद किशोर दादा को पत्र लिखा कि बच्चे कोई बड़ी बात नहीं है, आप बच्चे तो भूलों के सागर हैं, भूलों के सागर में एक बूंद कमी हुई है, एक बूंद ज्यादा हुई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम बच्चे भूलों के सागर है, हम बच्चे क्रोध के सागर है, हम बच्चे दुख के सागर है, इस प्रकार से कई बातों के हम सागर हैं। कर सकते हैं। मैंने बाबा को कहा, बाबा हम चोरिया से जन्म लेकर ले सकते हैं, चोरिया से जन्म हम माँ बाप के पास रहते हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, आप चोरिया से जन्म कहाँ से ले सकते हैं, आप जन्म माँ के गर्भ से कहाँ से ले सकते हैं। इस प्रकार से कई बातों में हम एक्सपर्ट है और आप नहीं कर सकते। आप सतयुग में आकर के दिखाओ, सतयुग में आ सकेंगे बाबा, सतयुग में बाबा आ सकेंगे, नहीं आ सके। मैंने कहा बाबा आप सतयुग में नहीं आ सकते, हम तो सतयुग से आ सकते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा के ऊपर। तो इस प्रकार से हम भी कोई नशा होना चाहिए बाबा, हम भी कोई कम नहीं है, हम कई बातों में एक्सपर्ट है। इस प्रकार से रूह रियान करो, प्यार के प्यार से बाबा के साथ रूह रियान करो, तो क्या होगा, योग जो है ना हमारा वो रमणीक हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हम योग में क्या करें, जो पहले दिन सिखाया है ना कि मैं आत्मा हूँ परमात्मा की संतान हूँ, यही बात 40 साल के बाद भी यही प्रयोग करते रहते हैं, मैं आत्मा हूँ परमात्मा की संतान हूँ, उसकी गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। जैसे वो कोल्हू का बैल होता है ना, कोल्हू का बैल घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। इस प्रकार से हम सब कोल्हू के बैल है और इसमें योग के अंदर यही करते रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ परमात्मा की संतान हूँ, वही बात की रटन रटते रहते हैं। बाबा ने योग के अंदर वैरायटी प्रकार की बातें कही है, हमारे हाथ में है हमारा योग कितना रमणीक बन सकता है, कितना इफेक्टिव बन सकता है। और अगर रमणीक योग नहीं किया तो क्या होता है, बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है कि बाबा सब ये अमृत वाले चक्कर लगाता है, भिन्न भिन्न पोज के अंदर होता है, कहीं बहन भाई झुटका खाते हैं। आज भी सुबह टीवी में जब ऑडियंस को दिखा रहे थे हमारे श्रीनिवास भाई, तो हमने देखा कहीं दो चार जो आगे लाइन में बैठे हुए थे वो झुटका खा रहे थे। कारण यही है कि ज्ञान को बाबा के ज्ञान को बाबा की बातों को रमणीकता से नहीं लेते, रमणीकता से नहीं लेते, इसके कारण क्या होता है, जो इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, अंदर से इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए कि हम परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं, इतना परमात्मा के महावाक्यों के प्रति जितनी श्रद्धा आदि होना चाहिए ये हमारे जीवन में नहीं होती। और इसके कारण क्या होता है कि बाबा के मुरली का जो सच्चा प्यार, सच्ची शक्ति, सच्चा बल, सच्चा प्रेम, वो हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये हमारे हाथों में है कि बाबा की मुरली से हम बाबा के प्रति, बाबा के महावाक्यों के प्रति, बाबा के श्रीमत के प्रति कितना हम सच्चा प्यार दिखा सकते, कितनी हम रिस्पेक्ट रिगार्ड दिखा सकते, कितना हम उसके आधार पर हमारे जीवन में उमंग उत्साह भर सकते हैं, हमारे हाथों में। बाबा तो ज्ञान देंगे, परंतु ज्ञान के आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन करना, जो कल बाबा ने कहा विश्व परिवर्तक आप बच्चे हैं, वो हमारे हाथों में है। कहाँ तक हम परिवर्तन कर सकते हैं अपने में, कहाँ तक अपने साथियों में परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे हाथों में है। तो इस प्रकार से कल बाबा ने प्यार की शक्ति की बात कही और बाबा ने फिर याद कराया कि दुनिया वाले आज के दिन प्यार का दिन कहते हैं, पहली बार कहा प्यार का दिन कहते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा आज के दिन यादगार प्रमाण, ये दूसरी बार कहा। कुल इस प्रकार से पांच बार बाबा ने, छह बार आज का दिन याद किया बाबा, मतलब वैलेंटाइन डे के लिए भी बाबा ने छह बार याद कराया। और फिर बाबा ने कहा आज के दिन चारों तरफ के बच्चे, फिर फॉरेन के बच्चे, और फिर बाबा ने कल पहली बार शब्द पहले ज्ञान तो क्या कहते हैं फॉरेन के बच्चे, यहाँ तो विदेश के बच्चे और देश के बच्चे ऐसा कहते हैं। कल बाबा ने एक नया शब्द यूज किया कि फॉरेन में रहने वाले चाहे गांव में रहने वाले, फॉरेन में रहने वाले चाहे गांव में रहने वाले, लेकिन हर बच्चे के दिल में, बच्चा बाप के दिल का दुलारा है, दुलारा मतलब बच्चा है। यह संगम युग ही परमादम प्यार के आप पात्र हो, लेकिन आज की दुनिया के हिसाब से, आज की तीसरी बार बाबा ने कहा आज की दुनिया के हिसाब से आज प्यार का दिन है, और इसलिए बाप दादा चारों ओर के एक एक बच्चे को बेहद का प्यार। देखो बाबा ने क्या कहा, तीन प्रकार का प्यार दिया है, तीन प्रकार का प्यार में भी प्रकार होता है। एक बेहद का प्यार, कल की मुरली के हिसाब से आप देखो गहराई में जाओ मुरली के हिसाब, मुरली में एक बेहद का प्यार, फिर दूसरा दिल का प्यार। हमारी दादी जानकी, मैं तुम्हारे पास तो फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, दादी जानकी गहराई में जाकर के बेहद का प्यार में क्या फर्क है और दिल का प्यार में क्या फर्क है, दोनों एक समान है क्या? बेहद का प्यार और दिल का प्यार। और तीसरा बाबा ने कहा कि सदा उमंग उत्साह में उड़ने का प्यार, सदा उमंग उत्साह में उड़ने का प्यार, समझ गए? तीन प्रकार का प्यार, प्यार में भी वैरायटी होती है, जैसे खाने में वैरायटी होती है ना, सब्जी होती है, दाल होती है, रोटी होती है, बहुत कुछ प्रकार की चीजें होती है। इस प्रकार से बाबा ने प्यार में भी तीन वैरायटी बताई, कि कौन सी बताई? बेहद का प्यार, सोचना इसके ऊपर, गहराई में जाना चाहिए इसके आधार पर, बेहद का प्यार में क्या फर्क पड़ता है दिल के प्यार से, और तीसरा है सदा उमंग उत्साह में उड़ने का प्यार। तीनों में फर्क होगा ना, कि तीनों एक समान है? आप सब क्या मानते हो, तीनों एक समान है वो माने तो हाथ खड़ा करो, और तीनों अलग अलग है वो मानते हो तो हाथ खड़ा करो। तो देखिए इस प्रकार से बाबा की मुरली के अंदर बाबा का इसकी गहराई में जाना चाहिए, कि दिल का प्यार, बेहद का प्यार हो, सदा उमंग उत्साह में उड़ने का प्यार, प्यार के और क्या, फिर बाबा ने क्या किया, प्यार के पात्र बच्चों को, हर बच्चों को सामने लाए दे रहे हैं। फिर बाबा ने तीसरी बार कहा, आज के दिन मनाने के कारण बना रहे, लेकिन हर बच्चा संगम पर, संगम के समय पर परमात्म प्यार के पात्र है, यह प्यार के पात्र आत्माएं अति प्यारे, अति प्यारे, देखो फिर समझना चाहिए, अति प्यारे भी बच्चे हैं और फिर बाबा ने कहा लाडले बच्चे भी हैं। हाँ, तो प्यार के बच्चे हैं, अति प्यार के प्यारे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, और फिर बाबा ने संगम युग की महिमा की, बाबा ने कहा क्या कहा, यह परमात्म प्यार सिर्फ संगम युग के एक जन्म में ही प्राप्त होती है। हमने ज्ञानामृत में संगम परम पुरुषोत्तम संगम युग के ऊपर काफी आर्टिकल्स लिखे हुए थे, तो हमारे ज्ञानामृत वालों ने उसकी सभी जो संगम युग के बारे में जो भी आर्टिकल लिखे हुए थे उसकी कंडेंस कर करके किताब छपवा रहे हैं, तो वो किताब शायद 15-20 दिन में छप जाएंगी, पुरुषोत्तम संगम युग, ताकि पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में हम बच्चे भी गहराई में समझ सके और दुनिया वालों को भी पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा बता सकते हैं। तो बाबा ने भी यही कहा कि यह संगम युग में ही, एक जन्म में ही प्राप्त होता है, यह प्यार अनेक जन्म के दुख और दर्द को समाप्त कर, फिर उसकी गहराई में जाओ, दुख किस बातों में हमको दुख होता है, किस बातों में हमको दर्द होता है, क्या दुख और दर्द एक समान है या अलग अलग है? एक समान होता है, जैसे हाथी को अंग्रेजी में एलिफेंट को एक समान हो गया, पर हाथी और घोड़ा दोनों एक समान अलग नहीं, अलग समान नहीं होता, अलग अलग होता है। इस प्रकार से ज्ञान की गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाएंगे ना तो उसकी जो रसना जो है, उसकी मिठास जो है, प्राप्ति जो है, वो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, और इसके कारण क्या होगा, आपका बाप के ऊपर और बाप की मुरलियों के ऊपर प्यार हो सकता है। कई लोगों को लगता है ये मुरली में क्या है, वही तो घड़ी घड़ी रिपीट होती है, यही बातें होती है, ऐसी नहीं है, प्यार से करो तो क्या होता है, बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से इसकी गहराई में भी जाओ, दुख और दर्द को समाप्त कर, सदा खुशी की खुराक खिलाने वाला है, खुशी की खुराक, इस बचाव देखो बता। फिर बाबा ने चौथी बार यूज किया, आज के दिन हम बाप दादा हर बच्चों के दिल का प्यार ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, हम बच्चे भी बाप को दिल का प्यार देते हैं, वो बाबा ने एक्नोलेज किया, रिसीव किया और दे भी रहे। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को महिमा की हुई है, बहुत सुंदर महिमा, हम बाप हमारी महिमा करे कितनी हमारे सौभाग्य की बात है। बाबा ने कहा कि आप सब भी प्रेम स्वरूप आत्मा, हम भी क्या है ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इस प्रकार से अनेक प्रकार के स्वरूप है। उसमें कल बाबा ने हमारा प्रेम स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा बन अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। प्रेम स्वरूप होगा, अंदर होगा तो बाहर दिखाई देगा, और वो कहां पर प्यार होगा, कहां से दिखाई पड़ेगा। वो बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात कही, कहां से प्यार दिखाई पड़ सकता है। बाबा ने कहा बच्चों के नैनों में, नैनों में, और फिर बाबा ने कहा मस्तक में परमात्म प्यार समाया हुआ है, नैनों में और मस्तक में परमात्म प्यार समाया हुआ है। और फिर क्या कहा, फिर प्यार अपने लिए नहीं रखो पर उसके बदले में क्या करो। बाबा ने कहा हर एक अन्य भाई या बहन को परमात्म प्यार के पात्र बनाने के उमंग उत्साह में सदा दिल में रहता है। इस प्रकार से बाबा ने प्यार की शक्ति को सेवा की शक्ति में रूपांतर करना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफर करना, क्या कहा इस प्रकार का प्यार जो है ना वो हर एक अन्य भाई और बहन को परमात्म प्यार के पात्र बनाने के उमंग उत्साह सदा दिल में रहता है। तो इस प्रकार से प्यार की शक्ति को बाबा ने सेवा की शक्ति के रूप में उसका रूपांतर किया। वो आना चाहिए। कई लोग क्या करते अपने पास ही प्यार रख देते हैं, इसके क्या, इसके लिए क्या होता है, जो अपने पास ही रख लेते हैं औरों को देते नहीं, इसको क्या कहा जाएगा, ये स्वार्थ का प्यार, अपने पास ही रख देते हैं। वास्तव में क्या होना चाहिए, लेना और देना दोनों होना चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा ने परमात्म प्यार पात्र के अन्य भाई और बहनों को बनाने का उमंग सदा रहे। फिर पांचवी बार भगवान बका आज देख रहे हैं हर एक बच्चे के मन में उमंग उत्साह है। फिर उमंग उत्साह है, किस बात का उमंग उत्साह है, हजार बातों का उमंग उत्साह हो सकता है। बाबा ने इन हजार बातों में से एक बात कही कि सबको उमंग उत्साह है, बाप समान बनना ही है। इस बात का सभी बच्चों के अंदर उमंग उत्साह है, बाप समान बनना, कितना बड़ा लक्ष्य बाबा ने हमारे सामने रख दिया, और वो भी उमंग उत्साह के साथ द्वारा हम बाप समान बनने का है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, बाप समान बनने के लिए क्या करना चाहिए, बाबा ने बहुत सहज दवाई दिखा दी, बहुत सहज उपाय दिखा दिया, बहुत सहज विधि दिखा दिया कि फॉलो फादर करना। फॉलो फादर करना तो क्या होगा, इसके आधार पर प्राप्ति हो जाएंगे। जैसे बाप का सदा हर बच्चे से चाहे पुरुषार्थ में नंबर वार है, हम बच्चे पुरुषार्थ में नंबर वार है, बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन फिर भी बाप का प्यार सदा बच्चे के साथ है ही। और इसलिए बाबा ने क्या किया, बाबा का अभी देखो प्यार की शक्ति के बारे में क्या करते हैं बाबा, वरदान देते हैं कि आज हर बच्चे को अमृत वेले, हर बच्चे को बाबा का प्यार स्वीकार करना हो, बाबा का वरदान स्वीकार करना हो तो कब मिल सकता है, वो ध्यान रखना है। बाबा ने कहा आज हर बच्चे को अमृत वेले, सुबह 4 बजे जो होता है अमृत वेले, जो इसके लिए उसका नाम अमृत वेला है, अमृत वेले बाप दादा विशेष चारों ओर और याद प्यार, चारों ओर याद प्यार और शक्ति का वरदान में देते हैं। याद प्यार क्या, किस रूप में देते हैं, शक्तियों का वरदान। तो बाबा से शक्तियों का वरदान प्राप्त करना हो तो कौन सा समय हो सकता है, इस हर चीज का समय होता है ना, नाश्ता होता है तो नाश्ता का समय होता है, भोजन होता है तो भोजन का समय होता है, रात का भोजन का अपना समय होता है, नींद का अपना समय होता है। इस प्रकार से बाबा से शक्तियों का वरदान प्राप्त करना हो, हाँ तो बाबा ने क्वालिफाई कर दिया। समझा आप सबने? बाबा से शक्तियों का वरदान प्राप्त करना हो तो अमृत वेले आपका विशेष चारों ओर के बच्चों को मिल सकता है। विशेष याद प्यार प्राप्त करना हो, विशेष स्नेह प्राप्त करना हो, विशेष शक्तियों का वरदान प्राप्त करना हो तो क्वालिफिकेशन है अमृत वेले ही, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अमृत वेले ही मैंने आप बच्चों के लिए रिजर्व रखा हुआ है। फिर बाद में क्या होता है, 5 बजे के बाद बाबा के पास भगत भी आते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं, तो इसके कारण क्या हो जाए, बहुत लोगों के सामने बाबा हम बच्चों को प्यार नहीं दे सकते। तो ये अमृत वेले ये ध्यान रखिए, आज से नक्की करिए कि हमको परमात्मा से वरदान के रूप में शक्ति प्राप्त करना है तो अमृत वेले ही मिल सकती है, बाकी टाइम पर नहीं मिल सकेंगी विशेष। तो इस प्रकार से कर करके बाबा ने कहा, और बाबा ने इसके और किसको ऐसे जो शक्तियों का वरदान प्राप्त करते हैं ना, जिन जो ऐसे शक्तियों का वरदान प्राप्त करते हैं ऐसे प्रभु पात्र बच्चों का ये भाग्य है। ये भाग्य सबका नहीं है, याद रहे, ये भाग्य सबका नहीं है, परंतु ऐसे कौन सा ऐसे जो सुबह अमृत वेले परमात्मा से याद प्यार के साथ शक्तियों का वरदान प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे प्रभु पात्र बच्चों का ये भाग्य है। हमको अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना हो तो क्या करना चाहिए, अमृत वेले परमात्मा प्यार से परमात्मा पिता से वरदान के रूप में शक्तियां प्राप्त करनी चाहिए। बाकी समय सारा दिन जो है मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु सुबह 4 बजे का जो योग जो है अमृत वेला का योग में उसमें वरदान के रूप में मिलता है। एक है प्राप्ति वरदान के रूप में और एक प्राप्ति है मेहनत के रूप में। आप सबको क्या पसंद है, वरदान के रूप में प्राप्ति हो जाती है वो पसंद है, या मेहनत करके प्राप्ति करने की उसमें वो पसंद है? जिनको मेहनत के रूप में प्राप्ति करना अच्छा लगता है, वरदान के रूप में नहीं चाहिए वरदान, क्योंकि वरदान शब्द बहुत बदनाम भी हो चुका है। बहुतों को शास्त्रों में क्या होता है, जो जितने भी राक्षस थे ने वो पहले बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत तपस्या करते थे और फिर वरदान प्राप्त करते थे, और उसके बाद क्या हुआ, वरदान के रूप में क्या हो गया, फिर वही वरदान के रूप में उनका तामसिक स्वभाव के कारण रावण को वरदान मिले थे, हरेक को वरदान अपना अपना मिला हुआ था, और उसके कारण क्या हो गया, वो वरदान बदनाम हो गया। अभी जो सीरियल आती है ना हर हर ये देवों का देव महादेव, मैं खास देखता हूँ इसके लिए, क्योंकि जो वास्तव में शास्त्रों में लिखा हुआ है इनसे शंकर के पार्ट में अलग अलग बातें कर दिया हुआ है, और उसके अंदर एक बात आती है, ब्रह्मा जो है ना वो शंकर को शंकर भगवान के लिए कहता है कि शंकर भगवान जो है ना बहुत भोले हैं और सोच समझ के बिना सामने वालों की सामने वाला पात्र है या नहीं इसके बदले में शंकर भगवान जो है सबको वरदान दे देते हैं, और वरदान देने के कारण क्या होता है बाद में समस्या खड़ी करते हैं। तो इस प्रकार से वरदान किस पात्र देख करके देना चाहिए वो हकीकत है। तो इसलिए बाबा ने ऐसे भाग्यशाली हम बच्चों को जिसके अंदर जो इसके पात्र है वो ही भाग्यशाली बच्चे हैं। फिर ऐसा कर करके बाबा ने प्यार की सागर की बातें प्यार की बातें आदि जो भी समाप्त किया, अर्थात 8:07 से 8:32 तक बाबा ने प्यार की बातें शक्ति की बातें वरदान की बातें कही। फिर आज का मुरली का जो कल की मुरली का जो मेन टॉपिक था उसके ऊपर आए, 8:32 से मैंने आपको बताया 8:32 से 9:15 तक 43 अब बाबा मेन मुरली चलाते हैं। पहले कल की मुरली का 2 परम हिस्सा है, एक प्यार के सागर के रूप में आज के दिन की बातें करके वो बराबर 25 चली, और उसके बाद जो भी मेन मुरली जो है वो 43 चली। वो ये समझना पड़ेगा कितनी कितने तरीके से बाबा ने बताया हुआ है। फिर बाबा कहते हैं एक और संकल्प है वो सुनावे, सुनावे कर करके हमारे अंदर बाबा ने इंतजारी किया और करना पड़ेगा और करने वालों को हाथ, करने वाले जो है उसको वो हाथ उठाओ, करने वाले जो है वो हाथ उठाओ। हमारे पास दो प्रकार के बच्चे हैं, हमारे पास दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बाबा ने कहा करने वाले हाथ उठाओ तो कईयों ने हाथ उठाया, वो मतलब बाबा के ऊपर पूर्ण भरोसा है, उसके कारण बाबा कोई भी बात कहेंगे हम करने लिए तैयार है, 100% तैयार है। इसके लिए हम बाबा ने किस बात के लिए हाथ उठाने की बात वो कही नहीं और सीधा पूछा कि हाथ उठाओ। और हमारे पीछे की लाइन में ही एक भाई बैठा हुआ था, एक भाई उसने बोला वो हमको हमारे कानों में आ गया कि हमको बताया तो नहीं है किस बात के अंदर हमको बात का लिए हमें हाथ उठाना है, और हमारे से ऐसे ही हमसे बताया बिना पूछे बिना हमारे से हाथ उठाते हैं बाबा। तो देखो दो प्रकार की बातें हैं, एक बाबा के पास पूर्ण भरोसा है, बाबा जिस बात में हमको हमारा हाथ उठवाएगा वो हमारे कल्याण के लिए होगा, इस प्रकार की पूर्ण श्रद्धा कईयों के दिल में होंगी। जिनके दिल में पूर्ण श्रद्धा होगी वो ही उसके ऊपर बाबा के बारे में हाथ उठाए। और हमारे पीछे में जो एक भाई बैठा हुआ था उसने कहा कि आप किस बात में हाथ उठाते हो तो बताया नहीं और हमको पहले ही पूछ लेता है, हमको पहले से ही बांध लेता है कि आप हाथ उठाओ। देखा दोनों प्रकार के बच्चों में कितना फर्क है। आप सब इसलिए हमने मन में कहा कि देखो हम इतने बाबा के भोले बच्चे हैं कि जो भी बाबा कहे हम करने लिए तैयार है, और इसलिए क्या हो गया शिव बाबा का एक नाम है भोलानाथ, शिव बाबा का एक नाम है भोलानाथ, अर्थात हम भोले बच्चे जो भी बाबा कहे उसको करने लिए तैयार हो, उसको कारण इसका हमारा बाबा का नाम हो गया है भोलेनाथ। तो हम बच्चे भोलेनाथ है ना, हाँ हम बच्चे, हमारा बच्चा शिव बाबा भोलानाथ है, हम बच्चे भी भोले हैं। आपको मालूम है पंजाब में एक मंदिर है, इसका नाम है शंकर का भगवान का मंदिर है, उसका नाम बैजनाथ। आप हम सब यहाँ बैज पहन करके बैठे हुए हैं ना, तो हम बच्चों का बैज जो है बैज का नाथ है वो, इसकी कहानी है। ऑस्ट्रेलिया में एक भाई बस में जा रहा था तो उसने बैज पहना हुआ था, तो उसको देख करके एक भाई ने उनको कहा कि ये बैज क्या है, तो उसने बताया ज्ञान सुनाया कि बैज है ऐसा लक्ष्मी नारायण है ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला है, पीछे में शिव बाबा का चित्र था, कहा ये परमात्मा है उसने भाई हमको ये ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर हम ऐसा बन सकते हैं। तो वो भाई के मन में उत्कंठा हुई और उसने कहा कि हमको ये बैज चाहिए, हमको ये बैज चाहिए। कौन सा बैज? पीछे में शिव बाबा का था, आगे में लक्ष्मी नारायण का था। तो उसने कहा वो ऐसा नहीं मिलता है, आप हमारे सेंटर पर जाइए, वहां जाकर के ये बैज लीजिए। तो उसने मन में नक्की कर दिया कि मुझे किसी भी हालत में ये बैज चाहिए, और उसके कारण वो सेवा केंद्र पर गया। वहां पर सेवा केंद्र की बहनों ने कहा कि आपको ये 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ये बैज मिलेगा। तो उसने कहा जो भी कहो मैं करने लिए तैयार हूं, पर मुझे ये बैज चाहिए। और उसने 7 दिन का भी कोर्स किया। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था ना, तो मुझे मैंने उनसे पूछा कि आपका ज्ञान में जन्म कैसे हुआ, तो उसने हंसी हंसी में मुझे कहा मेरा जन्म बैज से हुआ, मेरा जन्म बैज से हुआ। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है आपका यादगार पंजाब में है बैजनाथ, आपका यादगार है बैजनाथ, अर्थात बैज पहनने वालों का नाथ माना बैजनाथ परमात्मा है। पंजाब के बहन भाई कोई यहाँ बैठे हुए होंगे उनको मालूम होगा बैजनाथ कैसा मंदिर, और मंदिर में जाना है तो एकदम छोटी सी जगह है, हम मुश्किल से अंदर आप जा सकते हैं, अंदर बड़ा मंदिर है परंतु जाने का पैसेज एकदम छोटा है, मुश्किल से जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बैजनाथ मतलब बाबा का अनेक नाम जो है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, इस प्रकार से परमात्मा के भी अनेक नाम है, उसमें एक नाम है बैजनाथ, एक नाम है जैसे कल की मुरली के आधार पर हम कह सकते हैं हम भोले के वो भोला नाथ है। तो इस प्रकार से बाबा की महिमा जो है अलग अलग तरीके से आप याद करो तो क्या होगा, हमारा योग रमणीय हो सकता है। तो इसलिए बाबा ने कहा हाथ उठाओ, सबने हाथ उठाया, तो इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा कह दिया, हिम्मत तो बहुत अच्छी है और बाबा खुश भी है, हिम्मत बहुत अच्छी है, बाबा खुश है। और बाबा ने चार पांच बार कल बाबा ने हाथ कहा, हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप भी है। मैं हमेशा ही बाबा को कहता हूँ, बाबा आप तो कहते हो हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, हम बच्चों ने फर्क कर दिया है, हम बच्चे मेजोरिटी बच्चे, हम बच्चों ने क्या किया है, हिम्मत है बाप तो मदद है बच्चे। ऐसा कई बार भले हम कहें कि हिम्मत है बच्चे मदद है बाप है, पर तो हमारे जीवन के अंदर कई ऐसे व्यवहार की बातें बन जाती है, तो बाप हिम्मत देता है तो हम बाप को मददगार बनते हैं। और बाबा ने फिर बताया क्या अपना संकल्प क्या बताया, तो अब यह कमाल दिखाओ कि हर बच्चा निर्विघ्न बन बाप समान बने। ये ऑपरेटिव डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन, कि हर बच्चा निर्विघ्न बन बाप समान बने, अर्थात इसका अर्थ ये हो गया कि बाप समान बनना हो, हम बच्चों को बाप समान बनना हो, क्योंकि पहले बता दिया उमंग उत्साह के आधार पर बाप समान बनना है, तो बाप समान बनना है तो क्या होगा, हम बच्चों को अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन में जीवन का अपने व्यवहार के अंदर, वाणी आदि जो भी है उसके अंदर हमें निर्विघ्न बनना पड़ेगा। ये मुरली की ऑपरेटिव डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन, उसके बाद उसका विस्तार है। मेन डायरेक्शन क्या हो गया, खाली याद रख लीजिए कि निर्विघ्न बन बाप समान बनना है। फिर बाबा ने क्या किया, बाबा ने कहा लक्ष्य तो सबका एक समान है, सबको बाप समान बनने का है, सबका लक्ष्य है निर्विघ्न बनना, यही लक्ष्य है ना आप सबका, किसी का लक्ष्य है कि हमको विघ्न वाले बनना है, निर्विघ्न बनना है या विघ्न वाले बनना है, सबका लक्ष्य तो बाबा ने खुद ने कह दिया, सब बच्चों का लक्ष्य तो सबका एक है, परंतु करके मैं हमेशा ही कहता हूँ बाबा की मुरली में दो शब्द बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, एक है लेकिन और दूसरा है परंतु। बाबा पहली बार अच्छे बोल करके फिर लेकिन कर करके खतरनाक शब्द यूज करते हैं, बाबा कहे लेकिन लेकिन क्या होता है, लक्ष्य समान सबका एक समान है, लेकिन खतरनाक शब्द बाबा ने यूज किया हुआ है कि बीच बीच में कोई विघ्न आता है जो तुम्हारे पुरुषार्थ को थोड़ा ढीला कर देता है। हम बच्चों का पुरुषार्थ जो है निर्विघ्न बनने का, बाप समान बनने का, उस पुरुषार्थ को हम बीच बीच में कोई जो विघ्न आता है, निर्विघ्न के बदले में विघ्न आता है तो क्या होता है, हम बच्चों का पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। इसलिए बाबा ने कहा कि यही बाबा यही चाहते हैं कि हर एक अपने को लक्ष्य रख करके निर्विघ्न, अभी निर्विघ्न कितनी बातों में बनना है वो बाबा ने बताया हुआ है, कितनी बातों में निर्विघ्न, बाबा ने कहा पहले ही बात कही मनसा, मनसा मनसा में निर्विघ्न बनना है, पीछे दूसरा है बाबा ने वाचा, पीछे तीसरी बात है संबंध संपर्क, मनसा फिर वाचा संबंध संपर्क में सदा निर्विघ्न बाप समान बन, उमंग उत्साह में ला करके उनके सहयोगी बन करके उनों को भी निर्विघ्न बनाओ, खुद पहले निर्विघ्न बने फिर उनको भी उमंग उत्साह में ला करके उनको भी निर्विघ्न बनाओ। बाबा ने निर्विघ्न बनने की और बनने के बाद की सेवा का लक्ष्य हमारे सामने रखा कि सेवा लक्ष्य रखो। फिर क्या गया, एक तो ये अपना हो गया मनसा वाचा संबंध संपर्क में वो निर्विघ्न बनाने की बात कही, फिर और नई सेवा बताइए ये निर्विघ्न बने की। बाबा ने कहा हर एक अपने सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाकर के सबकी दुआएं ले, अपने सेवा स्थान हर एक का अपना अपना सेवा केंद्र तो है, सेवा के सेवा स्थान से तो आप सब यहाँ आए हुए हैं, तो हर एक कोई न कोई अपना सेवा स्थान, हाँ कोई सेंटर होगा, कोई सब सेंटर होगा, कोई गीता पाठशाला होगी, कोई क्लासेस होगा, अनेक प्रकार के हाँ बाबा के सेवा के कारोबार चलती है। इसलिए बाबा ने एक शब्द में सबको समेट लिया और कहा हर एक अपने सेवा स्थान को निर्विघ्न बना करके, अगर हम बच्चे अपने सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाएंगे तो रिजल्ट क्या होगे। बाबा ने रिजल्ट भी बता दिया कि अपने सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाएंगे तो क्या होगी, सभी के दुआएं ले सकते हैं। दुआओं लेने का सहज तरीका क्या है, अपने सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाओ। ये बाबा ने दुआएं प्राप्त करने की एक तरीका बताया। आप जानते हैं ना दुआ और दुआ, हम योग करेंगे 3 मिनट।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बलकार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
शांति। तो बाबा ने पहले बताया अपना जो सेवा स्थान जो है उसको निर्विघ्न बनाओ, फिर बाबा ने और ऑप्शन दे दिया और भी आगे बात बढ़ाई कि हर एक सेवा केंद्र या हर एक जहां भी है, घर में भी है चाहे सेंटर भी है, यह दृढ़ संकल्प करे और करके दिखावे कि मैं निर्विघ्न हूं और अपने साथियों को भी निर्विघ्न बनाने की सेवा करूंगा। क्योंकि हम सब घर में रहते हैं, बाबा के ज्ञान की मुझे किसी ने पूछा कि ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि क्या है, प्राप्ति क्या है, मैंने बाबा बताया उनको कि बाबा ने बताया कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी आप श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। भारतीय संस्कृति के मुताबिक क्या है, सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करना हो तो आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, जैन धर्म के अंदर जिन्होंने जैन धर्म का पढ़ा होगा उनके अंदर भी ऐसा ही है। जैन धर्म के अंदर भी सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करना हो तो आपको घर बार छोड़ना ही पड़ेगा। बौद्ध धर्म के अंदर भी ऐसा ही है, महायान हीनायान दोनों पंथ में ऐसा ही है, घर बार आपको छोड़ना ही पड़ेगा। बाबा की महान ज्ञान की महावाक्य बाबा का ज्ञान की खूबी महानता यही है कि घर ग्रस्त में रहते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। आप ही सब सोचिए, आप सबको अगर गृहस्थ जीवन का ये बात बाबा के बताई वो नहीं होती तो आप बाबा के ज्ञान में कैसे हो सकते? क्या आप सब सन्यासी बन सकते थे? हाँ, बहने भी सन्यासिनी बन सकती थी क्या? सन्यासिनी बनने में कितनी कठिनाई होती, क्या क्या होता है, इसके बदले में हम घर में रहते हुए भी सब प्रकार के पुरुषार्थ करते हुए, खान पान रहन सहन आदि सब प्रकार के करते हुए भी अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गृहस्थ जीवन की जो महिमा जो है, शंकराचार्य आदि ने सन्यास जीवन की, आपको मालूम होगा शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में डिबेट हुई थी कौन सा जीवन अच्छा है, गृहस्थ जीवन अच्छा है या सन्यास जीवन अच्छा है। तो उसमें सन्यास जीवन का शंकराचार्य की जीत हुई। हकीकत में वास्तविकता यही है कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र जीवन व्यतीत करना वो ही बहुत बड़ी बात है और सर्वश्रेष्ठ बात है। तो यही बाबा के ज्ञान की अगर सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्ति हो ये वही है कि हम घर गृहस्थ में रहते हैं। आप सब इतना सोचिए, इतने आप यहाँ बैठे हुए, किसी कोई किसी का बाप होगा, कोई किसी का पति होगा, कोई किसी की पत्नी होगी, कोई किसी की माँ होगी, इन सब बातों के लिए इतने परिवार वाले ही बैठे हुए, इन सब परिवार वाले सोचिए कि बाबा ने ये कितना हम बच्चों को मदद की हुई है कि आप अपने घर गृहस्थ में रहो, रहकर के भी पवित्र बनकर के पवित्र प्रवृत्ति के द्वारा श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। ये बाबा के सर्वश्रेष्ठ वरदान के रूप में, प्राप्ति के रूप में सर्वश्रेष्ठ बात है। आप सोचिए, शंकराचार्य ने घर बार छोड़ने की बात कही और शिवाचार्य ने क्या कहा, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनकर के करो, घर पति पति जहादी जो भी है वो कोई कोई पाप का साधन नहीं है, स्थान नहीं है, सहकार सबका लेकर के भी आप आगे बढ़ सकते हो। प्रेम से व्यवहार से सबके साथ में रहते हुए भी श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। ये बाबा की बहुत 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 जिन्होंने ज्ञान की गहराई में जो जा सकते हैं उनको मालूम पड़ेगा कि बाबा की ये जो सारा ही एम्फसिस जो है वो घर बार छोड़ने के ऊपर नहीं है, घर बार को पवित्र बनाइए, घर बार के अंदर रहते हुए भी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बाबा ने अपने हम बच्चों को निर्माण की बताया। क्यों? क्योंकि इसी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के आधार पर तो सत्योगी और त्रेता योगी जीवन का लाइफ का फाउंडेशन है। नहीं तो क्या होता है, सत्योगी में त्रेता में सब सन्यासी होते तो सत्योग कहाँ से आता। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा ने गृहस्थ जीवन गृहस्थाश्रम की बहुत 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 महिमा बढ़ाई हुई है। इसकी गहराई में जो जाएंगे उसको ही मालूम पड़ेगा कि इस गहराई के अंदर उसकी कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति है, कितनी श्रेष्ठ उपलब्धि है। बहुत गहरी बात है। क्रिश्चियनिटी में भी है प्रिस्ट बनना ही पड़ेगा, बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, शंकराचार्य के मत के हिसाब से भी घर बार छोड़ने की बात आती है। और बाबा ने शिवाचार्य ने इन सब की बातों को कैंसिल कर दिया और कहा गृहस्थ व्यवहार में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बता सकते हो। शंकराचार्य ने निवृत्ति मार्ग का आपकी प्रवृत्ति बताई, शिवाचार्य ने पवित्र प्रवृत्ति का मार्ग बताया। देखो दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। आप सब सोचिए, यहाँ जितने भी बैठे हुए पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के आधार पर यहाँ आए हुए हैं, नहीं तो क्या होता, निवृत्ति मार्ग होता, निवृत्ति मार्ग से क्या प्राप्ति होती। बाबा ने साफ कहा हुआ है कि शंकराचार्य शिवाचार्य सन्यासी आदि जो है वो द्वापर युग से ही आएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, सुख तो काग विष्ठा समान है। और बाबा ने क्या बताया, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा श्रेष्ठ में श्रेष्ठ सुख, सत्युगी दुनिया का सुख प्राप्त कर सकते हो। तो सुख की कितनी महिमा कर दिया। सन्यासियों ने सुख को कागविष्ठा समान कर दिया और परमात्मा ने क्या किया, 2500 वर्ष सतयुग त्रेता में हम सुख के आधार पर हमारा जीवन सुखी होगा, संसार सुखी होगा, हमारा समाज सुखी होगा, हमारा परिवार सुखी होगा। बाबा की मुरली की और बाबा के ज्ञान की ये गहराई समझनी चाहिए कि कैसे बाबा ने पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की महानता हमारे सामने रखी और उस मार्ग के ऊपर हम बच्चों को चला रहा है। पहले तो क्या हम मानते थे कि पवित्र रह नहीं सकते हैं। हम पवित्रता के बारे में बताते थे कि आग और कपूस जो है, आग और कॉटन जो है, वो कट्ठा नहीं रह सकते हैं, घर में रहते हुए पवित्र रह नहीं सकते हैं। इस प्रकार की बातें भक्ति मार्ग में बताई थी, बाबा ने सिखाया बताया और हम सबके जीवन के अंदर पवित्र प्रवृत्ति के आधार पर आग और कपूस कच्चा रह सकते हैं करके दिखाया। एक महान सन्यासी महात्मा विद्वान ब्रह्मा बाबा से मिल रहा था तो बाबा ने उनसे पूछा कि पवित्र रहते हो, तो बाबा भाई ने कहा, उसकी आयु 56 वर्ष की थी, तो जो गीता का बहुत बड़ा पंडित विद्वान था, मैं उनको बाबा से मिलने के लिए लेके आया था, तो बाबा ने उनसे पूछा पवित्र रहते हो, तो उसने कहा कि 2 साल से पवित्र रहता हूँ, मतलब 56 साल आयुष में 54 वर्ष तक पवित्र नहीं रहा और 2 साल से पवित्र रहता हूँ। तो बाबा ने कहा कि आप पवित्रता, उनसे पूछा आप पवित्रता के सिद्धांत सबको सिखाते हो, आप पवित्र रहने का सिद्धांत घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना चाहिए सिद्धांत सबको सिखाते हो, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं सिखाता हूँ। तो कहा क्यों, कहा मैं अगर पवित्र रहने की बात सबको कहूँ ना तो मेरा फॉलोअर सब भाग जाएंगे, मेरे फॉलोअर सब भाग जाएंगे, इसलिए मैं पवित्र रहने की, उसने कहा मैं मेरे बच्चे को बेटे को भी पवित्र रहने की बात नहीं सिखा सकता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा कि हमारे ये बाबा का ये विश्वविद्यालय के अंदर तो पवित्रता जो है ना फर्स्ट स्टेप है, प्रथम पगति है, आप सब जो भी यहाँ बैठे हुए उसका फर्स्ट स्टेप जिसके आधार पर ही आप सबको यहाँ आने का, बाबा के घर में रहने का चांस मिलता है, वो पवित्रता है फर्स्ट स्टेप। तो वो सन्यासी महात्मा जो विद्वान था गीता का, भगवान गीता के बारे में, उसको हमने 7 दिन का कोर्स भी कराया था, तब उसने कहा कि मैं जानता हूँ, मैंने रमेश भाई के द्वारा मालूम किया है और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका विश्वविद्यालय परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही चलता है, परमात्मा की शक्ति ही व्यक्तिगत जीवन के अंदर पवित्रता का व्रत धारण करने में मदद कर सकती है, ये परमात्म शक्ति है। हमारे में जो हम जो पवित्र रह सकते हैं उसका क्या कारण क्या है, हमारे पास परमात्म शक्ति है। दुनिया में क्या है, शास्त्रों की शक्ति है, विद्वानों की शक्ति है, सन्यासियों की शक्ति है, उस शक्ति में इतना बल नहीं है जो गर्भग्रस्त में रहते हुए कोई पवित्र रह सकता है। परमात्मा शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, कल बाबा ने परमात्मा शक्ति 8-10 बार कहा, ये परमात्मा शक्ति की महिमा समझिए, इम्पोर्टेंस समझिए और हमारे व्यावहारिक जीवन के अंदर कितना ये परमात्मा शक्ति उपयोगी बन सकती है, उसकी बात को समझने का कोशिश कीजिए। तो बाबा ने कहा सेंटर पर रहने वाले मैं भी बनू, हमारे साथियों को निर्विघ्न बनाऊ, इसलिए फिर कम क्या कहा, कम से कम हर सेंटर को अपने अपने साथियों के सहयोगी बन निर्विघ्न बनाने की सेवा में तत्पर सफल बने। फिर बाबा ने याद कराया चाहे सेवा केंद्र चाहे जहाँ स्वयं रहते भी हो स्वयं को भी निर्विघ्न और तो क्या होगा, स्वयं को भी निर्विघ्न बनाने का एक युक्ति बाबा ने बताई कि संकल्प मात्र में भी व्यर्थ समाप्त हो, जब तक व्यर्थ जीवन में होगा, जब तक विचारों में व्यर्थ होगा, फालतू बातों का संकल्प विकल्प चलता होगा, तब तक हम निर्विघ्न नहीं बन सकते हैं। और इसलिए बाबा ने कल कह दिया संकल्प मात्र में भी व्यर्थ जो आता है, व्यर्थ बातें आती है, व्यर्थ विचार आता है, व्यर्थ वाणी होती है, इन सब बातों से हमको मुक्ति दिलाते हैं। तो इसलिए वर्ष समाप्त कर ऐसे बनो और ऐसे बनाओ। तो इस प्रकार से किसको समाप्त करना है? व्यर्थ को समाप्त करना है। बाबा ने कितनी बातों का परिवर्तन कराया है। दुनिया में माया किसको कहते थे? पैसे को माया कहते थे, घर बार को माया कहते थे, परिवार को माया कहते थे। बाबा ने सब बातों को कैंसिल कर दिया। माया माना ही विकार, पांच विकार आदि जो भी है उसके बाल बच्चे सहित, वो विकार ही माया है, धन माया नहीं है। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही हुई है। बाबा के ज्ञान की गहराई में जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा कि बाबा ने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत 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 गहन क्रांति लाई है। बहुत बड़ी क्रांति, रिवोल्यूशन बाबा ने किया हुआ है इन सरल शब्दों के आधार पर। परंतु क्या है, हम बच्चे उसकी गहराई में जाते नहीं है, और इसलिए परमात्म ज्ञान की महानता, श्रेष्ठता और उपयोगीपना हम समझ नहीं सकते हैं। जो अगर वो समझे तो क्या हो जाएगा, हम बच्चे बहुत सहज निर्विघ्न बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए साथियों को सबको निर्विघ्न बनाने का दृढ़ संकल्प करो। फिर बाबा ने सवाल पूछा, क्या साथियों को निर्विघ्न बना सकते हो? फिर उसमें हाथ उठाने की बात कही, तीसरी बार कहा। फिर बाबा ने कहा कोई सब बच्चे सोच सोच करके हाथ उठाते हैं। फिर बाबा ने एक हमारा दूसरा टाइटल को याद कराया, ये जब आप विश्व परिवर्तक अपने आप को कहलाते हो तो विश्व के परिवर्तन के पहले जहां भी है उस स्थान को तो निर्विघ्न बनाएंगे ना। मतलब विश्व परिवर्तक कहने आने वाले अपने जहां जो स्थान पर हम है, चाहे घर में चाहे सेंटर आदि जो भी है, उसको निर्विघ्न बनाएंगे ना। बसवीर बाबा ने कहा लक्ष्य तो रखा हुआ है, रखो। जैसे अपने को निर्विघ्न बनाया, संकल्प में संभलता है, वैसे साथियों को भी, साथियों को निर्विघ्न, पहले देखो अपने को निर्विघ्न बनाने की बात कही, फिर सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाने की बात कही, फिर साथियों को निर्विघ्न बनाने की बात कही। अब चौथी बात कहते हैं, किसको चौथी बात निर्विघ्न बनाने की? वायुमंडल को भी निर्विघ्न बनाओ। सफलता मतलब निर्विघ्न वायुमंडल को भी, हमारा एनवायरमेंट, हम जहां रहते हैं हमारे वायुमंडल, हमारी पर्सनालिटी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला हमारी पर्सनालिटी को देख करके निर्विघ्न बनाए। इसलिए बाबा ने कहा बिना वायुमंडल को भी निर्विघ्न बनाओ, तब अपना राज्य आएगा। चार घर को देखो, किसको किसको निर्विघ्न बनाने का? एक स्वयं निर्विघ्न बने, दूसरा सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाओ, तीसरा बाबा ने क्या कहा, तीसरा जो है घर परिवार जो भी हमारे जहां रहते हैं उसको भी, पहले स्वयं पीछे सेवा के अंदर, फिर घर और जहां रहते हैं साथियों को सबको निर्विघ्न बनाओ, और चौथी बात कही वायुमंडल को भी श्रेष्ठ बनाओ, निर्विघ्न बनाओ, तब क्या होगा, अपना राज्य आएगा। हमारा राज्य हमको प्रस्तावित, सबको अपना राज्य चाहते हो ना, प्रस्तावित करना चाहते हो ना, अपना राज्य प्रस्तावित करना है तो ये चार बातों को, बातों का निर्विघ्न बना लाना पड़ेगा। फिर बाबा ने आज के दिन करके छठी बार आज का दिन याद किया, मतलब पर वैलेंटाइन डे याद किया। बाबा ने कहा आज के दिन यही काम देते हैं, खुद तो बने हैं, बाप दादा खुश है, लेकिन साथियों को भी निर्विघ्न बनाए। क्यों? साथियों को निर्विघ्न बनाने का कारण क्या है? अपना राज्य स्थापन करना है, करना है तो राज्य में भी सभी प्रकार के लोग होंगे। ये बाबा ने कहा सब प्रकार के लोग होंगे, हर प्रकार के टुंडे, संस्कृत में कहा हुआ है टुंडे टुंडे मतिर बिन्ना, हर एक के मन के अंदर अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के विचार व्यवहार होगा। अहिंसा सब प्रकार के साथी हमारे पास, हमारे राज्य में होगा। सबको संतुष्ट करना, सबको निर्विघ्न बनाना, आदर्श राजा का ये लक्षण है। आदर्श राजा का लक्षण यही है कि सबको खुश करना। और साथियों को भी निर्विघ्न बनाओ। और जरूरत पड़ी, बाबा ने रास्ता बताया, जरूरत पड़ी तो मदद लो, मदद लेकर के भी खुद निर्विघ्न बनो और सबको निर्विघ्न बनाओ। ऐसा नहीं हम तो बन गए, अपने आप में अहंकार नहीं आना चाहिए, निर्विघ्न बन गए। जरूरत पड़ी तो दादा बाबा ने जो कहा मदद लो, अपने साथियों की मदद, अपनी दादियों की, अपने बड़े जो भी है उनकी मदद लेकर के खुद भी निर्विघ्न बने, अपना परिवार को, साथियों को, सबको निर्विघ्न बनाओ। इसलिए मदद लेने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। हर संकल्प कर सकते हो, जो कर सकते हैं उसको हाथ उठाओ। मतलब हम मदद लेकर के भी निर्विघ्न बनेंगे, उसके लिए हाथ उठाया। बाबा ने कहा बहुत अच्छी, अच्छा हिम्मत है। फिर बाबा ने कहा कैसे चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपका वायुमंडल इतना पावरफुल हो, जो अपने वायुमंडल को जहां तक आपका वायुमंडल है वहां तक हरेक को निर्विघ्न बनाना है। आपका वायुमंडल बहुत, हमारा भी लिमिटेड वायुमंडल, हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका को तो निर्विघ्न नहीं बना सकते। हमारा जब जहां है उस जहां हमारा जो वायुमंडल, जो हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो साथी आदि जो भी है उन सबको निर्विघ्न बनाओ। फिर बाबा ने यह हो सकता है, ये हो सकता है, और फिर पांचवी बार हाथ उठवाया। पीछे वाले को भी बाबा ने हाथ उठाने की बात कही। फिर साथी किसको बनाने का, उसके लिए बाबा ने कहा अपने साथ रहने वाले व संपर्क में जो भी आते हैं उनको भी साथी बना करके उनको निर्विघ्न बनाना है। अपने साथी, साथ में रहने वाले जो भी है और हमारे संपर्क में भी जो आने वाले हैं उनको भी निर्विघ्न बनाना है। फिर बाबा ने एक कंसेशन दे दिया, कहा भले नंबर वार बनेंगे, कोई 16 कला संपूर्ण तो नहीं बनने वाले हैं, 100% परफेक्ट तो नहीं बनने वाले हैं, इसलिए बाबा ने कह दिया चाहे भले नंबर वार बने, यह तो बाप भी जानते हैं सभी तो 100% पास नहीं होंगे। बाबा ने कह दिया ना सबके 84 जन्म नहीं होते, कईयों के होंगे, कईयों के 83 बार जन्म हो सकते, कईयों के 82, कैसे इस प्रकार से होते ही रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा नंबर वार बनेंगे, हाँ परफेक्ट बनेंगे, सतयुग दशा में तो आने के लिए लायक तो बन जाएंगे। बाबा जानते हैं नंबर वार भी होगा और वो नंबर वार के कारण निर्विघ्नपने में भी फर्क दिखाई पड़ेगा, निर्विघ्नपने में फर्क दिखाई। एक बाबा की अव्यक्त मुरली है, बाबा ने कहा 16,000 की माला है, 16,000 की माला में पहला मणका और 16,000 का लास्ट वा मणका, दोनों में फर्क तो होगा ना, इसलिए एक मणका पहला नंबर पर आया, दूसरा मणका तीसरा लास्ट में आया, फर्स्ट और लास्ट में फर्क तो जरूर होगा। वो बाबा भी रियलाइज करते हैं, हम सबको ये वास्तविकता को रियलाइज करने का और एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि सब एक समान नहीं बन सकेगा। और फिर बाबा ने नई बात कही किसको किसको निर्विघ्न बनाना है, कि आज विशेष संकल्प करो कि अपने कनेक्शन में, हमारे कनेक्शन में जो भी आवे, और नजदीक वाले उन्हों को भी निर्विघ्न बनाना है। अपने कनेक्शन में जो भी आवे, नजदीक वाले जो भी है उनको निर्विघ्न बनाना है। इसके अंदर जरा कनेक्शन वालों की बात में मैं अभी 2-4 बातें बनी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे गामदेवी के अंदर एक बहन आती है, उसके बाप जो है वो बाहर गांव से आ रहा था तो ट्रेन के अंदर क्या हो गया, उसके साथ में बैठे हुए थे कनेक्शन, मतलब ऐसे साथ जो ट्रेन में साथ में बैठने वाले बातचीत होती रहती है ना, तो साथ में बैठने वाले ने क्या किया, एक बिस्किट निकाला और जो भी साथ में बैठे हुए थे उनको खिलाया बिस्किट। साथ में रहने बैठने वाले सबको बिस्किट खिलाया। उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं है, वापी तक अहमदाबाद से वापी आता है, वापी तक उसके बाप ने हमारी बहन को फोन भी किया, सब कुछ किया, वापी के बाद क्या हुआ मालूम नहीं है। वो स्टेशन पर उनके बेटा उनको रिसीव करने के लिए गया तो उसका बाप तो ट्रेन में था ही नहीं। इन्होंने बहुत जांच पड़ताल किया, सब कुछ किया, परंतु बाप मिला ही नहीं। इन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया, सब कुछ किया, पर तो बाप का जो जिन्होंने बिस्किट खिलाया ना वो सब उठा करके सामान वामान सब उठा करके उसके जेब से पैसा पॉकेट मोबाइल आदि सब लेके गए, पर तो एक चिटकी रह गई थी। तो बॉम्बे के अंदर एक भाभा हॉस्पिटल है, तो पुलिस वालों ने उनको अनकॉन्शियस बेभान अनकॉन्शियस अवस्था में भाभा हॉस्पिटल में दाखिल किया था। चार लोगों को बिस्किट खिलाया था, चारों को ही पुलिस उठा करके बाबा हॉस्पिटल में लेके गई, और उसमें उस भाई के जेब में से एक टेलीफोन नंबर निकला। तो इन्होंने टेलीफोन नंबर के आधार पर पुलिस ने उनको फोन किया, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ हमारा पिताजी जो है वो वापिस तो बराबर था, वापिस से कहाँ गया मालूम नहीं है। तो कहा कि ये यहाँ अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, आप आइए। वहां जाकर के देखा, उसको फिर स्टमक वॉश कराया आदि किया था, और फिर दो दिन के बाद उसको अब भान में आया और फिर बताया कि हमने बिस्किट खाया। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, बाबा ने जो सिद्धांत बताया हुआ है ना, बाहर का नहीं खाना चाहिए। हमारे कई भाई बहन हैं, हमारे एक भाई है दैवी परिवार का, मैं नाम नहीं कहता हूँ, वो बॉम्बे से अपने गांव जा रहा था, उड़ीसा जा रहा था आबू से, तो बॉम्बे में आया। बॉम्बे में सुबह आया, दोपहर में दो बजे कर्नाटक हो गया, तीन बजे कर्नाटक उनकी गाड़ी थी, ट्रेन थी कोणार्क एक्सप्रेस, वहां बोरी बंदर पर वीटी स्टेशन पर बैठा हुआ था। एक भाई साथ में आया, बाजू में बैठा, उनके साथ प्यार से बातें किया करते करते, कहा तो फिर वो भाई उठा, उसने कहा कि मैं जरा बाहर जाकर के आता हूँ, मेरा ये सामान का ध्यान रखना। तो अपना वो भाई जो है उसने भोलेपन में कहा ठीक है मैं तो सामान का ध्यान रखूंगा। थोड़े टाइम के बाद वो भाई घूम करके आया और साथ में गन्ने का रस का एक ग्लास भर के लाया, और उसने आकर के कहा कि देखो मैंने आपको तकलीफ दिया मेरा सामान का ध्यान रखने के लिए, कहा आपने ध्यान रखा, मैं बाहर गया था, मैं गन्ने का रस पी करके आया हूँ और आपके लिए ये गन्ने का रस लेके आया हूँ। तो अपने भाई ने कहा कि हम तो बाहर का खाते नहीं, तो ये खाने की बात नहीं है, तो गन्ने का रस है। तो उसने गन्ने का रस पिया, उसके बाद क्या हुआ उसको कुछ मालूम नहीं। वीटी बोरी बंदर स्टेशन पर वेटिंग रूम में वो बैठा था, वहां पर गन्ने का रस पिया, और उसके बाद क्या हुआ उसको मालूम ही नहीं। फिर तीन दिन के बाद जो है बॉम्बे की जो बोरी बंदर स्टेशन के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां तीन दिन के बाद उसको होश आया। होश आया तो तब उन्होंने बताया क्या है, पुलिस ने तो केस कर दिया था आत्महत्या का केस, भाई ने आत्महत्या का किया हुआ होगा। तो वो अपना भाई जो है उड़ीसा का भाई, मैं नाम नहीं कहता हूँ, उसने कहा कि नहीं मैं आत्महत्या नहीं कर रहा था, पर मुझे को साथी पड़ोस में एक भाई बैठा हुआ था उसने गन्ने का रस पिलाया। फिर कहा ऐसा कैसे माने, और उसके पास कुछ भी नहीं, उस जो चोर जो था उठा करके उसका सब सामान आदि सब कुछ लेके गया। तो फिर कहा मैं यहाँ पर जानता हूँ हमारे रमेश भाई का, पर तो एड्रेस मुझे मालूम नहीं, मैंने रास्ता देखा हुआ है। तो पुलिस को कहा कि मुझे चलो ले चलो टैक्सी में, तो पुलिस उसको पहले बॉम्बे सेंट्रल लेके आई, बॉम्बे सेंट्रल से उसने हमारा घर का रास्ता देखा था, हमारे घर पर पुलिस के साथ में हमारे घर पे आया, और फिर कहा कि देखो मेरा ऐसा ऐसा हो गया है, पुलिस मुझे समझती है मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, आप मेरे आइडेंटिफिकेशन दीजिए और मुझे पुलिस की सजा से मुक्त कीजिए। पुलिस को बताइए मैंने आत्महत्या का नहीं किया, किसी ने मुझे गन्ने के रस में पॉइजन पिला दिया था। तो हमारी बहन जो है हनीला बहन ने डॉक्टर थी, तो उसने गारंटी दिया, तो पुलिस ने कहा कि आप हमारी पुलिस स्टेशन पर आकर के गारंटी दो तो हम इसको छोड़ेंगे, नहीं तो हम मानेंगे कि इसने आत्महत्या करने का किया था कारोबार। तो इस पर अनिला बहन हमारी गई, उसको छोड़ाया और फिर हमारे घर पे आया, दो दिन हमने घर में रखा। बेचारे को बहुत कमजोरी हो गई थी। कमजोरी के बाद उसको हम फिर अपने उड़ीसा जाने की टिकट भी लेकर के दिया और थोड़े कपड़े भी खरीद करके दिया। इस प्रकार से साथी जो होते हैं स्टेशन के अंदर या कोई भी होता है उसका ध्यान रखिए। अभी दो दिन पहले भी अखबार में आया था कि एक विदेशी जो था वो कल का ये जो कोंकण रेलवे जो है पनवेल आदि से जाती है, पनवेल तक पनवेल के स्टेशन पर पुलिस ने देखा कि वो विदेशी जो है अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। पुलिस उसको उठा करके लेके गई। उसका सब सामान, पासपोर्ट, डॉलर्स आदि सब सामान चोर लोग उठा करके लेके गए। फिर वो जब होश में आया था उसने कहा कि हमारे साथी जो बैठे हुए थे उसने हमको कुछ खाने को दिया, हमने खाया और हम अनकॉन्शियस बन गए। तो ये बात ध्यान में रखिए, आप सब ट्रैवलिंग करते आते हो हाँ, तो खाने के समय पर हाँ कोई ऐसा कुछ खिला न दे, ऐसा कुछ पिला न देवे, वो ध्यान में रखने का है। ऐसा न हो हाँ कि आप भोलेपन में आकर के ऐसा कुछ खा लो और फिर क्या होगा, सारा सामान आज सब चोरी हो जाएगी। इसलिए वो बहुत ध्यान में रखने की बात है। तो इसलिए नजदीक वालों को भी संभालना है, ऐसा न हो कोई नजदीक वाले ही विघ्न बना देवे। फिर बाबा ने कहा बना सकेंगे, फिर बाबा ने कहा पहली लाइन वाले हाथ नहीं उठाते, पहली लाइन वाले हाथ नहीं उठाते, पहली लाइन वाले हाथ उठाओ। पहली लाइन के बारे में बहुत अच्छी है, पहली पंगत, पहली लाइन, उसके बारे में हजारी प्रसाद त्रिवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, पहली पंगत पहली लाइन। बताओ आपको कहानी, एक भाई जो था पटना की कहानी, वो हजारी प्रसाद त्रिवेदी पटना का था, बिहार का था, तो उसने वो कहानी लिखी हुई कि एक भाई वहां पर था, वो जहां भी भोजन के लिए निमंत्रण मिलता था वो वहां पहुंच जाता था और पहुंच करके हमेशा ही पहली लाइन में, पहली पंगत में बैठता था। उसको पहली पंगत में, पहली लाइन में बैठने का बहुत शौक था। एक बार क्या हो गया, जहां वो नौकरी करता था उसमें उसको टाइम लग गया, तो जब भोजन के स्थान पर पहुंचा तो पहली पंगत जो पहली लाइन जो है भर गई थी। तो खड़ा रहा, मन में दुख होता था, अरे मैं आज पहली पंगत में नहीं बैठा, पहली पंगत में नहीं बैठा। फिर उसका टर्न आया, उसने खाना शुरू किया, इतना खाना खाया, वो हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने लिखा हुआ है, कहानी है। तो वो खाते खाते बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, इतना खाया। तो फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने पटना जो है गंगा नदी के किनारे पर है, तो डॉक्टर ने कहा उसको गंगा नदी के पास लेके चलो और उसके मुख पर गंगा जल जो है वो उसके ऊपर स्प्रिंकल करो, डालो, तो वो कॉन्शियसनेस आ जाएगी। तो उसके ऊपर वो डाल रहे थे पानी आदि डाल रहे थे, इतने में क्या है आप जानते हैं गंगा नदी के अंदर क्या करते हैं, कई लोग बॉडी डेड बॉडी को जलाते नहीं है परंतु नदी में डाल देते हैं। तो वो थोड़ी कॉन्शियसनेस आती रही थी, इतने में एक बॉडी तरती तरती मतलब आई और उसके साथ टकराई। तो उसने उसको देखा तो उसने अपने मन में क्या बोला, ये पहली लाइन वाला था, माना पहली पंगत वाला था ये, तो मैं दूसरी पंगत में बैठा है, इसलिए खाने के बाद मेरे को गंगा जल छाटना गया तो इसमें मैं होश में आ गया और ये क्या है पहली पंगत वाला क्या हो गया, मर गया। तो इस प्रकार से एक व्यंग के रूप में हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने ये कहानी लिखी हुई कि पहली पंगत पहली लाइन। इस प्रकार से बहुत कुछ लेखक लोगों ने लिखा हुआ है, बहुत कुछ संस्कृत साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य, दुनिया का साहित्य में बहुत कुछ बातें लिखी हुई है। क्या बताऊं आपको। फिर बाबा ने टाइम भी दिया, कितना टाइम देंगे, निर्विघ्न बनना, अपने सेवा केंद्र को बनाना, साथियों को भी बनाना, वायुमंडल को भी निर्विघ्न बनाना। इसलिए बाबा ने कहा अगली सीजन का टाइम देवे कि अभी आज से करेंगे या अगली सीजन तक करेंगे, अभी हो सकता है, अपने साथियों को भी बनाना, नंबर वार हो गए, लेकिन इतना तो बनाओ नंबर वार है, लेकिन इतना तो बनाओ कि वो कोई भी विघ्न रूप बनकर के आपके पुरुषार्थ या आपके कार्य में निर्विघ्न नहीं बने, इतना तो बनाओ। फिर अच्छी सीजन रखी है, अगले सीजन में आएंगे तब ये खुशखबरी सुनेंगे। अगले सीजन में आएंगे जो बाबा के महावाक्य सुना तो सबने ताली बजाई कि बाबा अगले सीजन में आने का वायदा कर रहे हैं। इस प्रकार से अगली सीजन का वायदा कल बाबा ने ओपनली कर दिया, सीक्रेट कर दिया। बाबा त्रिकालदर्शी है पर तो भविष्य खोलता नहीं है, बताता नहीं है, कभी कभी इस प्रकार से इनडायरेक्टली बाबा भविष्य का इशारा दे देता है कि अगली सीजन तक तो विनाश नहीं होगा, अगली सीजन में भी हम बाप दादा को मिल सकेंगे। ये खुशखबरी है ना, तो ये खुशखबरी बाबा ने इनडायरेक्टली बता दिया कि अगली सीजन में आएंगे तो ये खुशखबरी सुनेंगे कि हम सब ने निर्विघ्न खुद बने, साथियों को निर्विघ्न बनाया, सेवा केंद्रों को निर्विघ्न बनाया और वायुमंडल को भी निर्विघ्न बनाया, संबंध संपर्क में आने वाले को भी निर्विघ्न बनाया। तो इस प्रकार से अगली सीजन की बात कही तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन साथियों को आसपास वालों को सबको निर्विघ्न बनाना है। फिर बाबा ने कहा नजदीक वाले को भी आप समान बनाना है, इस प्रकार से कहा। और फिर बाबा ने क्या कहा, फिर बाबा ने भविष्य की बात कही कि जब फिर आएंगे तो यह रिजल्ट देखेंगे, यह फिर आएंगे। तो मेरे मन में विचार आया कि फिर आएंगे, अभी तो बाबा शिवरात्रि के दिन 27 तारीख को आने वाले हैं, तो फिर आएंगे माना 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट बाबा चाहता है, क्या चाहता है। और तो बाबा ने पहले बता दिया अगली सीजन तक का टाइम देते हैं, तो इसके आधार पर आप फिर आएंगे तो रिजल्ट देखेंगे, हिम्मत आपकी फिर मदद बाप की, इस प्रकार से कहा। फिर बाबा ने कहा इस प्रकार का पुरुषार्थ करके बाप दादा को दिखा रहा है। बाप दादा ने क्या कहा कि सबको प्रैक्टिकल में अपने साथियों को निर्विघ्न बनाना है, अपने को अपने साथियों को सबको जो निर्विघ्न बनाएंगे तो बाबा ने क्या कहा सबको इनाम देंगे, सबको इनाम देंगे। फिर बाबा ने कहा हम बाबा कोई भोला नहीं है, हम बच्चे भोले हैं पर तो बाबा भोला नहीं है। बाबा ने क्या कहा निर्विघ्न बनाया है क्या नहीं क्या, इसके बाबा ने कहा क्या कहा बाबा ने कहा थोड़ी इंक्वायरी तो करेंगे, इंक्वायरी का क्या रूप होगा हमें मालूम नहीं है। बाबा इंक्वायरी करने के लिए परीक्षा करने के लिए माया को भी भेज सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। बाबा ने एक बात कह दिया है कि हमारे निर्विघ्न पने की परीक्षा बाबा लेने वाला है, ऐसा नहीं आंख बंद करके बाबा बता देंगे, ऐसा नहीं है, बाबा हमारा निर्विघ्न पने की परीक्षा लेंगे। बाबा ने बताया हुआ है ना, एक अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है कि अंतिम समय की परीक्षा 1 सेकंड की होगी, परीक्षा तो बाबा के ज्ञान में आती रहेगी, बाबा भी परीक्षा लेगा माया भी परीक्षा लेगा। तो बाबा की परीक्षा में बाबा ने अंतिम समय की परीक्षा के लिए कहा है कि अंतिम समय के परीक्षा में 1 सेकंड की परीक्षा में जो पास हो गए वो बिंदीधारी बनेंगे और वो 1 सेकंड की परीक्षा में जो फेल हो गए वो चिंदीधारी अर्थात त्रेतायोगी बनेंगे। सत्ययोगी और त्रेतायोगी के बीच में फर्क में यही होगा, अंतिम समय की 1 सेकंड की परीक्षा में जो पास हो गए वो सत्ययोगी बनेगा आत्मा, जो फेल होगा वो त्रेतायोगी बनेगा। तो कितना, और बाबा ने कहा कि ये अंतिम समय की परीक्षा में पास होने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय का अभ्यास होगा तो ही अंतिम समय की परीक्षा में पास हो गए। तो इस प्रकार से परीक्षा बाबा लेगा लेगा लेगा, और जो परीक्षा लेगा बाबा तो उसमें जो पास होगा, गुलजार दादी रशिया गए थे तो वहां पर भी एक अखबार वाला ने गुलजार दादी को पूछा कि आपके पास समस्या आती है तो आप क्या करते हो, गुलजार दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हम समस्या को समस्या नहीं समझते हैं, हम समस्या को परीक्षा समझते हैं, और जो विद्यार्थी होता है, आप सब हम सब स्कूल में थे, हम जानते हैं गुलजार दादी रवि का परीक्षा में जो पास होते हैं उसका क्या होता है, आगे का पढ़ाई के लिए चांस मिलता है। तो हमको आगे बढ़ाने का साधन परीक्षा है। तो इस प्रकार से परीक्षा को गुलजार दादी के, हम परीक्षा से डरते नहीं है, परंतु हम समझते हैं ये परीक्षा से हम आगे बढ़ने का हमको चांस मिलेगा। तो इस प्रकार से बाबा भी परीक्षा लेगा, और परीक्षा लेगा जो उसमें पास होगा उसको बाबा इनाम देगा। फिर बाबा ने कहा छोटी मोटी बातें आएंगी, परंतु आप परिवर्तन कर लो, हम परिवर्तन कर लेंगे तो क्या होगा। छोटी मोटी बातें हमको परिवार कहना हमको परेशान नहीं करेंगे, कहना भी नहीं पड़ेगा। समझदार तो हो, परीक्षा के समय पर ऐसी छोटी मोटी बातें आएंगी, बाबा कहते हैं समझदार तो हो, और ऐसी परीक्षाओं के टाइम क्या करना है वो जानता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो नहीं करना है वह नहीं करो, बहुत सिंपल बात बता दिए। जो करना है क्या वो जानते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है जानते हो। तो बाबा ने कहा जो नहीं करना है वो नहीं करो, जो नहीं करना है वो क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं। बाबा की अव्यक्त मुरली में है, बहुत सुंदर बात कही है। बाबा ने कहा कि मैंने बच्चों को जो कहा है वो बच्चे नहीं करते, और जो नहीं कहा, नहीं करने के लिए कहा हुआ है वो ही करते हैं। जो मैंने कहा है वो बच्चे नहीं करते, और नहीं कहा है वो ही करते हैं। मैं सामने बैठा था, बाबा ने मैंने बाबा को कहा बाबा ये समझ में नहीं आया, किस बात में आपने कहा है वो हम नहीं करते, और किस बात में आपने कहा है वो हम नहीं करते, और जो नहीं कहा है हम करते हैं। मैं सुन रहा हूँ बाबा का बात, किस बात में हमको कहा है करना है वो नहीं करते, और किस बात में नहीं करने को कहा है वो हम करते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया बच्चे, बाबा ने कहा है आप बच्चे को आप प्यार के मास्टर प्रेम का सागर बनो, मास्टर आनंद का सागर बनो, मास्टर शक्ति का सागर बनो, हमने ये सब बातों का गुणों का सागर बनो, शक्ति का सागर बनो, ये बनने के लिए कहा हुआ है। परंतु बच्चे मास्टर प्रेम का शांति आदि का सागर नहीं बनते हैं। और बाबा ने कहा कि मैंने बच्चों को कभी ये नहीं कहा है कि आप बच्चों को मास्टर धर्मराज बनना है, मैंने आपको धर्मराज बनने के बाबा क्या बाबा ने आप हम बच्चों को हाथ में कानून लेने की मना की हुई है। बाबा ने कहा मैंने आप बच्चों को कभी मास्टर धर्मराज बनने के लिए कहा नहीं है, और आप बच्चे कदम कदम पर धर्मराज बनकर के औरों के बारे में कहते हो ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है कर करके धर्मराज का मेरा जो कर्तव्य है आप बच्चे कर लेते हो। तो इस प्रकार से किस बात में करना है किस बात में नहीं करना है उसका पूरा ही ज्ञान हम बच्चों के पास होना ही चाहिए। और फिर बाबा ने याद कराया कि विश्व परिवर्तक बनने के लिए हरेक को निर्विघ्न बनना और साथियों को बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप विश्व परिवर्तक हो, एक दो साथियों को बदलना क्या मुश्किल है, हमारे पास थोड़े ही साथी होते हैं, क्या दुनिया की बात नहीं करते। बाबा ने कहा दुनिया को बदलने की बात नहीं, अपने जो थोड़े साथी जो है उसको ही निर्विघ्न बनाओ। और इसलिए बाबा ने फिर से याद कराया कि हर एक अपने ध्यान रखे कि अपना वायुमंडल और अपने साथियों को निर्विघ्न बनाना है। बाबा ने निर्विघ्न बनाने की बात कही और हाथ खड़ा करवाते रहे, सब मिलकर के कल बाबा ने 18 बार हाथ खड़ा करवाया, 18 बार। फिर बाबा ने संकल्प करो मुबारक दिया, बहुत कुछ किया, साथियों को निर्विघ्न बनाओ, खुद को निर्विघ्न बनाओ, साथियों को निर्विघ्न बनाओ। और बाबा ने क्या कहा, बहुत सुंदर बात कही, ये छोटा सा काम बाप ने दिया हुआ है, यह छोटा सा काम बाप ने दिया हुआ है। दादी जानकी कहती थी हमारे हाथ में है छोटा काम को बड़ा करना या बड़े काम को छोटा करना। हम निर्विघ्न बनाना, निर्विघ्न बनाने को बहुत बड़ा भारी समझेंगे तो क्या होगा, उसके बोझ में हम दब जाएंगे। इसके लिए बाबा ने क्या कर दिया, ये छोटा सा काम, क्या खुद निर्विघ्न बनाओ, सेवा के लोग निर्विघ्न बनाओ, अपना वायुमंडल को निर्विघ्न बनाओ और अपने साथियों को निर्विघ्न बनाओ। बाबा के लिए तो ये छोटा सा काम है, बाबा कहते ये छोटा सा काम है, छोटा सा काम है। फिर भी बाबा ने क्या कहा, मैं जानता हूं आप सभी बच्चों को, सभी बच्चों को जानता हूं, मैंने सबको कहा ये छोटा सा काम है, परंतु बाबा ने कहा बाप सभी को नहीं कहते हैं, जो अच्छे पुरुषार्थी है उसको ही कहते हैं कि एक छोटा सा काम करके दिखाओ। बाबा ने रिजल्ट भी बता दिया, मैं सबको लिए नहीं करता, हमारे यहाँ जितने भी बैठे हुए कल 22-23 हजार बैठे थे, उन सब के बाबा कहते मैं जानता हूँ सब निर्विघ्न न बनने वाले हैं, ना निर्विघ्न किसी को बनाएंगे, फिर न कुछ बातें तो रह जाएंगी, इसलिए बाबा कहते मैं सबको नहीं कहता हूँ हाँ, परंतु सिलेक्टेड को कहता हूँ। ऐसे बाबा के सिलेक्शन में आने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। फिर बाबा ने अपने मजा की बात कही, बाबा ने कहा बाप दादा को मजा आता है, मैं हमेशा ही कहता हूं इस ज्ञान की खूबी क्या है कि परमात्मा को भी अच्छी बातें पसंद आती है, परमात्मा का भी अपना चॉइस होता है, ऐसा नहीं हाँ परमात्मा निर्विकारी है, निराकारी है, निर्विघ्न आदि सारे ही है, परमात्मा को भी जैसे पिता को लौकिक दुनिया में भी प्यार का आदि अनुभव करा सकते हैं, इस प्रकार से परमात्मा को भी मजा आ सकती है। ये परमात्मा को मजा आने की बात को समझना, सीखना और देखना ये यहाँ ही बन सकता है, और इसके लिए क्या करो, हिम्मत रखो। बाप दादा को बहुत खुशी होती है कि हिम्मत बच्चे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मदद ए बाप साथी बन जाएगा। फिर अगली वाली क्या करने का वो सारी बातें बताई है, और फिर बाबा ने क्या क्या साथी बनाने के साथ साथ एक दो को भी मददगार बन करके साथी बनाओ। फिर क्या कहा, बाबा ने छोटा सा काम दिया हुआ है, निर्विघ्न बनने से क्या हो जाएगा, बाबा ने कहा है निर्विघ्न बनेंगे तो क्या होगा, सदा खुश रहेंगे और औरों को सदा खुश बनाएंगे, खुश रखेंगे, खुद खुश रहो और औरों को भी खुश रखो। तो बाबा ने कहा यह मंजूर है ना, खुश सदा खुश रहेंगे और औरों को भी खुश रखेंगे। क्यों कि फिर से बाबा ने बता दिया कि आपको अपना राज्य स्थापन करना है, और अपने राज्य में जो आपके साथी होंगे वो आप समान तो होंगे, आपके समान साथी होंगे तो ही आपका राज्य कारोबार निर्विघ्न बन सकता है। ऐसा कर करके बाबा ने मुरली पूरी किया, अर्थात ऑपरेटिव मुरली का पार्ट था वो 43 मिनट्स चला। उसके बाद बाबा ने जोन वालों से मिले, उसको भी कहा कि अपने एरिया को आप निर्विघ्न बनाओ, क्योंकि राजधानी स्थापन करनी है, और आपकी राजधानी कब तक चलेगी वो भी बाबा ने बता दिया कि आपकी राजधानी आधा कल्प चलने वाली है। तो इसलिए हर एक सेंटर इंचार्ज, जोन इंचार्ज को बाबा ने कहा कि हर एक अपनी समस्या को हल करो। साधारण समस्या सबने बाबा ने कहा सब समस्या एक समान होती है, लेकिन हर एक अपने एरिया की समस्या को समाप्त करके सफलता मूर्त बनाओ, इस प्रकार से टीचरों को बाबा ने कहा। फिर हाथ उठाने के बाद की 17th नंबर में बाबा ने कहा हाथ उठाओ, और फिर से बाबा ने कहा अपनी राजधानी बनानी है तो ये निर्विघ्न बने का संस्कार डालना पड़ेगा। और बाबा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात है, माँ बाप भी मददगार बन सकता है, और इसलिए क्या करो, टीचर्स को रास्ता बताया है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए निर्विघ्न बनाने के बनने के अंदर तो यज्ञ में लिख करके भेजो, मधुबन में लिख करके भेजो, बाप को लिख करके भेजो तो ठीक होगा, लिख करके भेजो तो क्या होगा ठीक होगा, और मदद भी मिल सकती है, मदद भी मिल सकती है। मधुबन में भी देर मधुबन में यज्ञ में माना मधुबन में हेडक्वार्टर क्वार्टर में लिख करके भेजो, और क्या होगा तो मदद मिलेंगे। और इसलिए बाबा ने लास्ट में फाइनल कह दिया कि निर्विघ्न तो बनना ही पड़ेगा, निर्विघ्न बनेंगे तो ही आपका राज्य स्थापन होगा। फंडामेंटल लास्ट में बाबा ने बता दिया निर्विघ्न बनने की क्या जरूरत है, कि आप निर्विघ्न बनेंगे, साथियों को निर्विघ्न बनाएंगे, सेवा केंद्रों को निर्विघ्न बनाएंगे, वायुमंडल को निर्विघ्न बनाएंगे तो ही अपना राज्य स्थापन होगा। इसलिए बाबा बताते हैं कि अभी अचानक का कारोबार शुरू हो गया है, तो इसलिए अपने अभी प्रैक्टिकल में अपना राज्य स्थापन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसका फर्स्ट स्टेप कल बाबा ने बताया कि आपको निर्विघ्न बनना पड़ेगा, साथियों को निर्विघ्न बनाना पड़ेगा, आपके वायुमंडल को निर्विघ्न बनाना पड़ेगा, आपके घर जहां रहते हो उन सबको निर्विघ्न बनाना पड़ेगा। तो निर्विघ्न बनना ये फर्स्ट स्टेप है, प्रथम भक्ति है। तो अगर वो नहीं, अगर निर्विघ्न नहीं बना तो क्या होगा, अपना राज्य स्थापन नहीं कर सकेंगे। फिर डबल विदेशियों की बात कही बाबा ने, वो भी 8 मिनट बाबा ने बात कही है, उनको भी कहा अच्छे जिससे बात कहे उनको भी, और बाबा ने उनसे भी हाथ उठवाया जयंती बहन की महिमा की, और फिर बाबा ने याद प्यार दिया, और याद प्यार देकर के 9:31 को फिर स्टेज के ऊपर कारोबार हुआ, और 9:56 को कारोबार चला, अर्थात 25 मिनट स्टेज के ऊपर कारोबार चला। उसमें मुन्नी बहन है, जानकी दादी है, मोहिनी बहन, निर्मला बहन, सबसे बात किया। हमको भी बाबा ने पूछा, पहले तो हमारी तबीयत के बारे में पूछा, फिर बाबा ने कहा निर्विघ्न बन सकते हो ना कारोबार में। मैंने कहा बाबा कारोबार में निर्विघ्न बनने के लिए हम पूरा प्रयत्न करते, थोड़ी कुछ कमी रह गई वो आज आपने बता करके हमारा कार्य जो है ना बहुत सहज कर दिया। और उसके कारण बाबा ने कहा कि निर्विघ्न है, सभी काम ठीक चल रहा है, जिसकी भी बात है वो ठीक हो रही है और होना ही है, मुबारक हो। फिर ब्रिजमोहन भाई से बात किया, फिर दादी जी के साथ भी ब्रिजमोहन भाई से बात किया कि 20 मार्च को हरिद्वार में संत सम्मेलन रखने वाले हैं, तो संत सम्मेलन की भी बात कही। फिर बाबा ने हमारे से बात की कि कारोबार ठीक है, तबीयत ठीक है, इस प्रकार से बात किया। फिर बनारसी भाई को भी कहा सेवा ठीक कर रहे हो और आपको भी ये सेवा का वरदान है, इस प्रकार से बात किया। फिर बाबा ने सबको टोली आदि बाटी दिया, खिलाया किया, और इस प्रकार से मुरली पूरी की। 9:56 को गुलजार दादी बाबा गए, एक सेकंड में गुलजार दादी को बाबा ने नीचू भेज दिया, एक सेकंड में जैसे गई और फौरन वहां, जैसे कि बाबा गुलजार दादी को नीचे भेजने के लिए तैयार थे, एक सेकंड में गुलजार दादी आ गए, और इस प्रकार से मुरली कल की समाप्त तो हो गई। अर्थात 7:57 से आए और 9:56 को एक घंटा 59 मिनट समझो कि 2 घंटे तक प्यारे बाप दादा हम बच्चों के साथ में रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि शिव पिता परमात्मा 2 घंटे तक साकार में हम बच्चों के साथ रहे। तो इस प्रकार से कल की ये मुरली है, आपको गिनती करना चाहिए। आज का दिन की बात भी हो गई, माना वैलेंटाइन डे को 6 बार याद किया, और फिर हाथ उठाने की बात 18 बार कही बात की, हिम्मत मरते मदद बात जो है 5 बार बाबा ने कहा, और फिर बाबा का इस प्रकार से वो गिनती करना चाहिए। अब याद रहे, फट से याद रहेगा। पिछली मुरली में जो थे उलैना देने की बात थी, बाबा ने 12 बार कहा कि कोई ऐसे उलैना ना दे, ऐसी बात 12 बार कही। और अचानक क्या होगा उसके बारे में अचानक की बात बाबा ने 11 बार कही। इस प्रकार से गिनती करो कितनी मिनट रहे, पिछले टाइम मिनट 1 घंटा 36 मिनट बाबा हमारे साथ रहे, उसके पहले में 1 घंटा 35 मिनट बाद बाबा हमारे साथ रहे, कल 1 घंटा और 59 मिनट समझो ना कि 2 घंटा हमारे साथ रहे। इस प्रकार से गिनती करो, ये भी आध्यात्मिकता का बाबा के ज्ञान का ये एरिथमेटिक है, वो भी सीखो तो इसके बारे में मालूम पड़ेगा और क्या होगा, खूबी आएगी, मजा आएगी। ज्ञान का एरिथमेटिक सीखना बहुत कठिन बात नहीं है, सहज है, परंतु उसके लिए दृष्टि बिंदु चाहिए। मैंने आज सुबह से हमारे को कई लोग मिले, मैंने सबको पूछा कि बाबा ने कल कितनी बार हाथ उठाया, किसी को भी मालूम नहीं था। किसी ने कहा 4-5 बार, किसी ने कहा कि 10-12 बार कहा होगा, 18 बार बाबा ने हाथ उठवाया, वो किसी को भी मालूम नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से ज्ञान की गहराई में जाओ, मुरली की गहराई में जाओ, तो क्या होगा, बाबा की मुरली की रसना जो है, प्राप्ति जो है, बाबा की मुरली के प्रति स्नेह जो है, वो स्नेह बढ़ेगा। नहीं तो क्या होता है, मैं बाबा को हमेशा ही बाबा को कहता था, बाबा आपने एक गलती किया है। मैं साकार बाबा को कहता था, बाबा आपने एक गलती किया है। बाबा ने कहा, अच्छा मैंने गलती किया है? मैंने कहा, हाँ बाबा आपने बहुत बड़ी भारी गलती किया है। बाबा ने कहा, अच्छा बताओ बच्चे मैंने क्या गलती किया? हमने कहा, बाबा आपने 2 कान दिए हैं, 2 कान दिए हैं, इसके लिए क्या होता है, ज्ञान जो यहाँ से अंदर जाता है ना, सीधा यहाँ से निकल जाता है, अंदर जाता ही नहीं है, अंदर नहीं जाता है, उसके कारण आप ही हो, आपने 2 कान दिए। बाबा ने कहा, मैंने तो 2 कान इसलिए दिया, 2 कानों से अंदर ज्ञान जावे। मैंने 2 कान इसलिए दिया कि ज्ञान से, 2 कानों से अज्ञान अंदर जावे। और आप बच्चों ने क्या किया, 1 कान से जो जाता है और 2 कान से निकाल देते, हम उसमें एक्सपर्ट है। इसलिए मैंने बाबा को कहा कि अगले कल्प में 1 ही कान देना, और 2 कान देंगे तो मुसीबत हो जाएगी। ऐसे बाबा के साथ हंसी कूदी क्या करो, हंसते रहो बाबा के साथ, प्यार से रहो। लौकिक दुनिया में भी बाप से आप प्यार करते थे, कितना हंसी कूदी से करते थे, इस प्रकार से श्री बाबा भी हमारा बाप है, परलौकिक बाप है, ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप है। इसका भी बाप का और बाप दादा का बीच में का फर्क का मालूम पड़ना चाहिए। हम लोग समझते नहीं है, ज्ञान की गहराई में नहीं जाते। देखो कई बार बाबा बताते हैं, हम कहते हैं बाप, कहते क्या, बाप को याद करो वर्षे को याद करो, बराबर है, बाप को याद करो वर्षे को याद करो। वहां पर बाबा बाप दादा को याद करो नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं, वर्षा कहाँ से मिलेगा, बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखो, बाप का कर्तव्य क्या है और ब्रह्मा बाप का कर्तव्य क्या है, इस प्रकार की ज्ञान की गहराई में। कल भी कई जगह पर हिम्मत है मदद है तो बच्चे मदद है बाप कहा हुआ है, आपने समझा, हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप है, मदद है बाप दादा नहीं है। हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप है, बाप मदद कर सकता है क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है, तो इसलिए बाप मददगार बन सकता है, बाप दादा मददगार नहीं है। इस प्रकार का डिस्टिंक्शन बाप का और अलौकिक परलौकिक बाप परमात्मा का कर्तव्य और उनके साथी में जो ब्रह्मा बाप है उसका भी कर्तव्य को बीच में क्या फर्क है वो समझना चाहिए, तब क्या होगा, सच्ची प्राप्ति होगी। कि बाबा ने जो कहा हुआ है, बाप को याद करो वर्षे को याद करो, तो ये बाप को याद करने की बात है, कहाँ बाप को याद करने का है, कहाँ बाप दादा को याद करना, बाप दादा खुश होते हैं ऐसा बाबा ने कहा है, परंतु बाप को याद करना है तो याद बाप को ही करना है, वो याद रखिए, वर्षा भी बाप को याद करने से मिलेगा। और इस प्रकार की बातें जो है उसके ज्ञान की गहराई में जाओ तो मजा आएंगी। मैं हमेशा ही कहता हूँ आप सबको, हमारी मैं बार बार विनती करता हूँ कि ज्ञान की गहराई में जाओ तो क्या होगा, हाँ बहुत कुछ ज्ञान की मुरली के आधार पर बहुत कुछ अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है ज्ञान की गहराई में जा करके। तो क्या करें, बाबा ने कहा है सब नहीं जा सकेंगे, इसलिए मुझे भी आनंद है, मैं भी समझता हूँ कि सब ज्ञान की गहराई में नहीं जा सकेंगे, परंतु फिर भी मेरी आप सबको नम्र विनंती है कि ज्ञान की गहराई में जाओ तो क्या होगा, सच्चा अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आप सब ज्ञान की गहराई में जा सकेंगे ऐसी शुभ भावना रखता हूँ, और आप सबका सहयोग और आप सब ने मुझे यहाँ पर हम बाबा की मुरली के अंदर क्या क्या गहराई थी वो बातें करने के लिए चांस दिया, आप सबने शांति से सुना, इसके लिए आपका आभार मानता हूँ। ओम शांति।